धन्यवाद भाई नेविल, प्रभु आपको आशीष दे। ये सदा हर प्रकार से जल्दी में मैं अंदर आया। भाई मूर टेलीफोन पर उनके यहाँ पेंटिकॉस्टल की 50वीं जुबली वर्ष के विषय में थे। मैं व्यापारी वर्ग के साथ तारीफ तय करने की कोशिश में था दूसरी जगह में, और मैंने कहा बूंद बंद कर दिया, कहा केवल विश्वास को सुना, आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है। और मैंने उन्हें बिल्ली के साथ कर दिया और दरवाजे से भागा, इसलिए मैं नहीं जानता कि वे वहाँ पीछे कैसे नतीजे पर पहुँचे। ये मैं वास्तव में लुविल जाना पसंद करता हूँ, यद्यपि उन लोगों में अच्छे दक्षिणी लोग वहाँ हैं, परंतु तब मुझे वहाँ आसपास उन्हीं तारीखों में फ्लोरिडा में होना है, व्यापारियों की क्षेत्रीय बेदारी में। ये एक प्रकार से उलझ गया। जब आप उन्हें एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं एक ही समय में, इस प्रकार से हम यहाँ इस प्रातः सारे आनंदित हैं और जीवित हैं उन लोगों के बीच जो आमीन कह सकते हैं। ये ठीक बात है। अब मुझे खेद है कि हम यहाँ ठसाठस हो गए हैं। और उसने कहा उनमें से कुछ लोग आए और फिर वापस चले गए, परंतु हम जो कर सकते हैं ये सबसे अच्छा इस समय में, आप जानते हैं, आप समझते हैं, मैं आश्वस्त हूँ, मुझे क्षमा करें। क्या आप इस वाले से अच्छा सुन सकते हैं या इस वाले से? ये वाला यहाँ अच्छा है, बस इसी के आसपास मैं हूँ, ये यहाँ रिकॉर्डिंग वाला है। ठीक है, ठीक है श्रीमान। अच्छा, बीती रात्रि आपको आनंद आया? निश्चय ही हमें मिला और प्रभु ने हमें आशीषित किया। वहाँ संदेश के विषय में बहुत सारी बातें कही जा सकती थी, परंतु मैंने सोचा हो सकता है आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, आप जानते हैं, और आप अनुभव करेंगे। और पंक्तियों के बीच में वो घड़ी जिसमें हम जी रहे हैं, हम ठीक अंत के समय पर हैं। और मैं ये विश्वास करता हूँ, निसंदेह हर व्यक्ति ने ये सोचा कि मैं समझता हूँ जब से यीशु ने वापसी की प्रतिज्ञा दी, परंतु आप जानते हैं इन्हीं किन्हीं दिनों में वो आने वाला है। जो भी है, देखिए, घटने के लिए कुछ बचा नहीं, मैं नहीं देखता, केवल कलीसिया का उठाया जाना। अब इसके पहले की संदेश पर आए, इस प्रातः मैं चाहता हूँ कि उल्टी गिनती के विषय पर, और अब हम, और आज रात्रि याद रहे, आज रात्रि की सभा अब उसकी उपस्थिति में रहना है, समझे? और हम जल्दी जल्दी करने का यत्न करेंगे जल्दी, ताकि आप निकल सकें, ताकि हम सोमवार प्रातः को फिर से काम पर हों। और हम आप सबके आभारी हैं। मैं बस नहीं जानता कि हम क्या करेंगे, और मैं आपके बिना क्या करूंगा, मैं बस आपके बिना कुछ नहीं कर सकूंगा। और मैं बहन विलियम को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं उस महिला को जानता तक नहीं। जब मैं इस प्रातः जागा, मेरा भाई चार्ली कॉक्स वहाँ था और ड्योड़ी पर खाना भरा पड़ा था, डिब्बे वाला सामान और चीजें। कैसे उस बेचारी महिला ने इस गर्मी में पसीना बहाया होगा, डिब्बे में सामान डालना, टमाटर और खाने की चीजें। अब इसका मेरे लिए बहुत ही अर्थ है। और बहन विलियम, मैं विश्वास करता हूँ उन्होंने आपकी बाइबल यहाँ प्रार्थना के लिए छोड़ दी है, प्रार्थना के लिए कहा कि परमेश्वर करेगा। मैंने इस प्रातः कमरे में प्रार्थना की जब मैं संदेश के लिए अध्ययन कर रहा था कि परमेश्वर बाइबल के अंश लेगा और आपके हृदय पर रखेगा, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। चाहता हूँ कि बहन मैं इसके लिए आपको भुगतान कर सकूँ। मैं निश्चय ही जानता हूँ आपने इसमें बहुत ही पसीना बहाया है, और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कहना बहुत कम है, परंतु मैं आपको एक वचन दूँ, जहाँ हम जानते हैं जैसा कि मैंने बीती रात्रि कहा, असफल ना होगा। यीशु ने कहा, मेरे इन छोटे से छोटों के साथ जो तुमने किया मेरे लिए किया, और ये आपको वापस होने पाए जिस प्रकार से ये होगा, यदि ये आपने सीधे उसके हाथों में दिया होगा। परमेश्वर इसके लिए आपको आशीष दे। आप सबको धन्यवाद। जब आप लोग यहाँ पर हैं और मैंने दशमांश आदि में पाया जो आप देते हैं, यह आपका विश्वास जो हम में है कि ये परमेश्वर के राज्य के लिए जाएगा। अब हम इसके लिए उत्तरदायी हैं, देखिए, और इसका हिसाब देना है। इसलिए जो हम करते हैं उस हर चीज पर ध्यान देना है कि हर कार्य सिद्ध जितना हम कर सकते हैं जिस प्रकार हमारा प्रभु इसे चाहेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस समय वो हमें उत्तर देने के लिए बुलाएगा और हर चीज का हिसाब लेगा जो भी हमारे मार्ग में है। यही कारण है मैं सोचता हूँ पौलुस, बीती रात्रि उसके पास एक ही कोट था, समझे? उसके पास और भी हो सकते थे, परंतु नहीं हुए, वही एक कोट वो एक बार में उपयोग कर सकता था, इसलिए उसने बस एक ही रखा। मैं नहीं सोचता कि उसने संसार की संपत्ति की चिंता लोकप्रियता के लिए की। आप जानते हैं कि मेरा क्या अर्थ है। हर कोई अपने महान धार्मिक अभियान में, जैसा कि ये आज है, और बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ कि ये टेप किया जा रहा है और जब मैं बातों को यहाँ पर कहता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ कि मैं केवल इसी भक्त मंडली से ही बात नहीं कर रहा हूँ परंतु सारे संसार से। और मैं, क्योंकि ये टेप बहुत सारे राष्ट्रों में बाहर जाएगा और वे इसे अफ्रीका में आदिवासियों को भी ले जाएंगे और वहाँ बैठकर और सेवक इसे वहाँ ले जाते हैं और लोगों में इन टेपों का अर्थ बताते हैं, वहाँ जहाँ वे उल्टा और सीधा हाथ भी नहीं जानते, समझे, वहाँ दूर ऑस्ट्रेलिया और वहाँ से होते हुए जहाँ लोग ये भी एक ही बात की वे खाते हैं, जिस प्रकार से वे चीनी प्राप्त करते हैं, छोटी सी सीपी लेते और चींटियों के झुंड को खोदते और इस प्रकार से उनकी पीठ को काटकर अलग करते, इस प्रकार से वे अपनी चीनी पाकर जीवित रहते हैं। और उनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वे एक बूढ़ा कंगारू लेकर उसे आग में डालते हैं, उसके अंदर की आंतें और सारी चीजें, और उसे थोड़ा सा खुरच कर और फिर उसे खाते हैं। और ये भयानक है। और याद रखें, ये टेप वहाँ बजाए जाएंगे, संदेश जो आप यहाँ सुन रहे हैं वहाँ सुनाए जाएंगे, सैकड़ों मिशनरियों के द्वारा ये टेप ले जाए जाएंगे और वहाँ बजाएंगे और लोगों को अनुवाद सुनाया जाएगा। इसलिए आप देखते हैं, जब मैं वहाँ न्याय के दिन में पहुँचूंगा, आप देखिए मेरे कंधों पर कितना भार है, क्या हो यदि मैं किसी को बहकाऊं, समझे, आप वहीं पर हैं। उन प्राणों के विषय में जरा सोचें, यदि मैं उन्हें बहका दूं गलत बातों से। इसलिए मेरे भाइयों, मैं इन संस्थाओं में आया हूं और उनमें से बहुत से अच्छे लोग हैं, उनमें अधिकांश इसके लिए मैं आनंदित हूं, परंतु उनमें से कुछ ऐसे हो गए और अगुए अक्सर ऐसे स्थान पर आ जाते हैं कि वे उनसे समझौता करते हैं और इस प्रकार बनाते हैं, ओ जैसे राजनीतिक मामला हो, वे इसमें राजनीति खेलते हैं और इसमें वे परमेश्वर के वचन से अलग हो जाते हैं। और मुझे परमेश्वर के वचन के साथ बने रहना चाहिए, मुझे वहीं रहना चाहिए और इस पर आना ही है और मैं मुझे इसके साथ ही चलना है, बस इसलिए। और हम, आप जानते हैं, हम एक छोटा गाना गाया करते थे, हम समय की धार के साथ नीचे जा रहे हैं, हमें यहाँ अधिक नहीं रहना है, आपने सुना है, तूफानी बादलों का अंधकार चमकते दिन में बदल जाएगा, ये ठीक बात है। हम सारे हिम्मत रखें क्योंकि हम अकेले नहीं छोड़े गए हैं, ये ठीक बात है। जीवन रक्षक नाव जल्दी आ रही है, रत्नों को जमा करके घर ले जाए। यही समय है जहां मैं एक कोट पाने की आशा करता हूं, जो कभी भी ना फटेगा, यही बात है, वो अनंत, और मुझे परमेश्वर के प्रति सच्चा होना चाहिए, पृथ्वी की चीजों पर ध्यान न देते हुए जब तक मैं वहां ना पहुंचूं। और फिर हम होंगे वे ही जो अंत तक रहने वाले हैं। इसलिए मैं इन 30 में सेवकाई का 32वां वर्ष चल रहा है, मैंने वचन के साथ सच्चा बना रहने का यत्न किया, मैंने एक भी चीज नहीं जानता जो मैंने कभी बदली हो, क्योंकि मैंने ये बाइबल से पढ़ा है, कहा जो बस बाइबल ने कहा और इसे ऐसे ही चलने दो। और इसलिए मुझे वापस नहीं लेना पड़ा या फिर से व्यवस्थित करना, क्योंकि मैंने वही कहा जिस प्रकार से बाइबल इसे कहती है। और मैंने पाया, यदि परमेश्वर ने कुछ कह दिया तो फिर हमें उसी वचन के साथ जाना है ताकि उसे हम पूरा कर सके। हमने देखा है, जैसे कि मैंने आपको बीती रात्रि बताया, हाल ही का दर्शन, देखिए कि ये मुझे वहाँ होना है और चेतावनी वहाँ होनी है, उस स्थान के लिए 6 महीने पहले बता दिया और वहाँ खड़ा होता हूँ और कह रहा हूँ वहाँ जाओ 3 बार उनके साथ। और मैं दूसरे व्यक्ति के साथ चला गया और दर्शन ठीक वैसे ही घटित हुआ, परमेश्वर का भाग, और मैं खड़ा रह गया था। इसलिए हम याद रखना चाहते हैं, आपको वचन पर टिके रहना है, बस वचन के साथ बने रहें और जहाँ वचन अगुवाई करे आप ठीक वचन के साथ जाएं और ये आपको शांति के साथ बाहर लाएगा, मैं निश्चित हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप लोग यहाँ 8 बजे से हैं और इस समय लगभग 10 बज रहे हैं, ये है, इसलिए आइए हम अपने प्रभु से प्रार्थना करें। क्या कोई विशेष निवेदन है? मैं यहाँ बहुत से रुमालों को रखे हुए देखता हूँ, निवेदनों के लिए अपने हाथ को उठाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब वो ये जानने के लिए, मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ कि वो हर हाथ को देखता है और हर हृदय को जानता है, और करने के लिए केवल एक चीज बची है कि उससे मांगे, और आप इसका विश्वास करते हैं और ये हो जाता है। अब आप विश्वास करें जैसा कि हम प्रार्थना मांगते हैं। स्वर्गीय पिता, अब हम परमेश्वर के महान सामर्थी सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं, स्वाभाविक देह में एक मरणहार जीव, फिर भी हमारी आवाजें वचन बोल रही हैं, जो उस महान सिंहासन से आ रही है, उस दूसरे आयाम से जहां परमेश्वर बैठता है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम पिता से कुछ भी मेरे नाम से मांगो मैं वो करूंगा, और उसने हमसे कहा संदेह ना करो, परंतु जब हम प्रार्थना करते हैं ये विश्वास करते हुए कि हम पाते हैं जो कुछ हमने मांगा और ये हमें दे दिया जाएगा। कहा यहाँ तक कि तुम इस पहाड़ से कह सकते हो हट जा और अपने हृदय में संदेह ना करो, परंतु विश्वास करो, जो तुमने कहा वो हो जाएगा और जो तुमने कहा तुम पा सकते हो। पिता, हम जानते हैं कि ये इतना सत्य है कि हम दिन प्रतिदिन देखते हैं और आपके वचन में कोई गलती नहीं है। ये क्योंकि हम उस स्थान पर नहीं हो सकते। कभी कभी हमारा विश्वास यहाँ तक नहीं जाएगा, हम घबरा और संदेह करते हैं, परंतु इस सुबह प्रभु हम आने का यत्न कर रहे हैं उस नई आशा के साथ जो मसीह के जीवन डोर को पकड़े हुए है और उसकी प्रतिज्ञा, और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं यीशु के नाम के द्वारा। प्रभु, मैं निश्चित हूँ कि आप सारे निवेदनों को जानते हैं जो इस प्रातः उठे हुए हाथ के नीचे हैं। मेरा भी उठा हुआ है और प्रभु, ये निरंतर आप पर है, क्योंकि मैं भी एक जरूरतमंद व्यक्ति हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ आप हर निवेदन को स्वीकार करेंगे। प्रभु, इनकी ओर देखें और इनके निवेदनों का उत्तर दें, एक छोटे से बूढ़े तक, छोटे से निवेदन से बड़े निवेदन तक। तब पिता इन्हें उत्तर दें हर एक को, मैं यीशु के नाम में मांगता हूँ। तब प्रभु मेरा भी याद रखें, और मैं प्रार्थना और धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी देहों को विश्राम दिया और उस ज्ञान के लिए जो आपके वचन का हमारे पास है और आत्मा की जो समझ हमारे पास है, और निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप हमें महान समझ देंगे ताकि हम बेकार में फूलने वाले लोग ना हों इसके द्वारा, परंतु एक नम्र लोग, ताकि पवित्र आत्मा हमें अपनी काम में ला सकने के योग्य हो कि परमेश्वर के वचन को पूरा करें और हमें यथास्थान में रखें जहां हमें इस घड़ी में होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें सही स्थान में होना चाहिए कि ये घटित हो। और प्रभु, हम ये चाहते हैं। यदि मेज के पीछे ये गृहिणी है, यदि ये कारखाने के मनुष्य के लिए है जिसके हाथ में पाना हो और एक गवाही, यदि प्रचार मंच पर सेवक के लिए हो या डीकन या ट्रस्टी, या एक बच्चे के लिए विद्यालय में या नवयुवक कक्षा में विचार विमर्श में, प्रभु ये जहाँ कहीं भी हो हम ठीक समय पर वहीं पर हों, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने प्रतिज्ञा की है और ये घटित होने जा रहा है, क्योंकि आपने ऐसा कहा है और इसी कारण से हमारा विश्वास इस पर बना है। अब प्रभु, हम अनुभव करते हैं कि हमारे पास अधिक लंबा समय नहीं है, समय आ रहा है, हम बाहर के अंतरिक्ष से कोहरे को अनुभव कर सकते हैं जैसे कि ये भीतर आता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का न्याय और क्रोध आने के लिए तैयार है, हम उसके प्रभाव को पहले ही अनुभव कर सकते हैं, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करेंगे। और अब प्रभु मेरी सहायता करें इस प्रातः इस छोटे से संदेश पर लगभग 30 मिनट का उल्टी गिनती कहलाया। प्रभु हमारी सहायता करें कि इसे सही समझें हम जहां पर हैं, और अब हमें पवित्र करें प्रभु, हमारे पाप और अपराध हमसे दूर कर दें, और होने पाए इस प्रातः एक भी व्यक्ति खोया हुआ ना हो, होने पर कोई तैयार हो उस महान घेरे में जब हम उस ओर मिलते हैं, जब नाम पुकारा जाए एक के बाद दूसरा नाम, मैं सुनने पाऊं उपस्थित हूं, हम इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु, और बूढ़े सदा के लिए युवा हो जाएंगे, एक ही क्षण में बदल जाएंगे, अमरणहार उसकी समानता में खड़े होंगे, सूर्य और सितारे धुंधले, जैसे कि डैनियल ने कहा, वे जो बहुतों को धर्मी बना देते हैं सदा सितारों की नाई चमकेंगे। परंतु हम सुनते हैं जो आपने भविष्यद्वक्ता से कहा है, डैनियल चला जा क्योंकि तू अपने भाग में विश्राम करेगा, परंतु उस दिन तू खड़ा होगा। ओ परमेश्वर, हम यीशु के लहू में होकर योग्य गिने जाएं, हमारे में कोई योग्यता नहीं है जिसका दावा करें, परंतु उसकी योग्यता में होकर हम योग्य हो जाएं कि उस दिन खड़े हों, जैसा कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उसकी धार्मिकता में खड़े होने की इच्छा रखते हैं, उस महान भविष्यद्वक्ता डैनियल के साथ, और वे सब खड़े होंगे जब इनाम दिया जाएगा। तब तक प्रभु हमें अपने हाथों में एक साधन बनाए, इस प्रातः हमारे कानों को साधन बनाए कि आपके वचन को सुने, मेरे होठों को ये बोलने के लिए साधन बनाए, क्योंकि हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं और हमारी समझ परमेश्वर की इच्छा को समझे। आमीन। इसे आरंभ करना कठिन है, ये प्रतीत होता है आप में से बहुत से कह सकते हैं और कहना चाहते हैं, और ऐसा लगता है कि इतना थोड़ा सा समय इसे कहने को, हो सकता है इसके पहले मैं छोड़ूं, बीती रात्रि मैंने कहा हो सकता है हमें अवसर मिले कि बाइबल की एक पुस्तक को चलाएं इस वसंत या जाड़े में छोड़ने से पहले। जा रहा हूं, मैं समुन्द्र पार जाना चाहता हूं, प्रभु ने चाहा, बड़े दिन के बाद किसी समय। मैं चाहता हूं इस सुबह आप पढ़ने के लिए निकालें इब्रानियों का 11वां अध्याय, और अब ध्यान पूर्वक सुने, इसे पढ़े जाने को मैं तीसरे पद पर जोर देना चाहता हूं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। अब भूमिका के लिए ये कुछ विचित्र विषय है, वो विषय जो मैं उपयोग में लाना चाहता हूँ। दिखने वाली चीजों से चीजें नहीं बनी हैं। अब इस सुबह मैं इस विषय का उपयोग करना चाहता हूँ, उल्टी गिनती, क्योंकि मैं इसको भविष्यवाणी की तरह से समानांतर बनाना चाहता हूँ। बीती रात्रि मैं थोड़ा वचन पर सिखाना चाहता था, इस प्रातः भविष्यद्वक्ताई संदेश, और आज रात्रि एक सुसमाचार का संदेश। अब चीजें जो चीजों से बनी थी, जो दिखाई नहीं पड़ती, अब मैंने इन वर्षों से होते हुए सीखा, वे सारी चीजें जो स्वाभाविक हैं, आत्मिक चीजों का प्रतीक हैं, हर चीज जो स्वाभाविक है। और अब याद रखें, जब आप किसी चीज को प्रकृति में देखते हैं, ये आत्मिक चीज का प्रतीक है, समझे? सारी चीजें जो उन चीजों से बनी हैं, जो दिखाई नहीं पड़ती, देखिए, वो स्वाभाविक जो आत्मिक को प्रतिबिंबित करता है। अब जैसे मैं कुछ दिनों पहले अध्ययन कर रहा था, और मैं विश्वास करता हूं, मैंने बीती रात्रि में उल्लेख किया हल्का सा कि मैं पढ़ रहा था जहां या रेडियो पर सुन रहा था जो कनाडा से आ रहा था कि कहां वो डॉक्टर यहां संयुक्त राज्य में है जिसने ये वक्तव्य दिया कि मनुष्य 1,40,00,000 वर्षों का विकास है। उन्होंने इटली में एक हड्डी 1800 में खोदी, लगभग 1800 में, कि ये हड्डी मनुष्य की हड्डी है जो कि रही थी, हो सकता है के द्वारा, जबकि वे ये करते हैं कि बताएं कि ये कितनी पुरानी थी। और डॉक्टर जैसा कि एक बूढ़ा मनुष्य जिसने अपने सारे जीवन भर इस हड्डी का अध्ययन किया, और वो कहता है ये हड्डी मनुष्य की हड्डी ये 1,40,00,000 वर्षों पुरानी है। अब ये कितना निरर्थक है, कैसे किसी मनुष्य ने अपना जीवन कुछ नहीं के लिए लगा दिया, परमेश्वर के वचन को असत्य प्रमाणित करने को, और उसे इसमें कुछ नहीं मिला सिवाय ना मिलने वाला गंतव्य। और कोई भी जानता है कि यदि आप एक हड्डी को जमीन में गाड़ देंगे, 20 वर्षों में वो हड्डी बदल जाएगी, और 100 वर्षों में वो हड्डी लगभग समाप्त होने को हो जाएगी, बस उसके टुकड़े, और कोई मतलब नहीं आप उसे कैसी अवस्था में रखते हैं, समझे? और 1,000 वर्षों में उस हड्डी का क्या होगा, 10,000 वर्ष, 10 गुना में क्या होगा, 10,00,000 होंगे, तब 14 गुना 10,00,000, ओ प्रभु, ये तो बस ऐसी बात का सोचना समझदारी भी नहीं। एक हड्डी 14 करोड़ वर्ष की नहीं चलेगी किसी भी स्थिति में, कोई भी ये जानता है, उसने कुछ हड्डी जैसे दिखने वाला कुल ले लिया होगा, और फिर वे कितनी अच्छी तरह बता सकते हैं कि ये 14 करोड़ वर्ष पुरानी है, समझे? कुछ भी है, परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर 6,000 वर्ष पहले बनाया और ये तय हो गया। कोई कुछ समय पहले मेरे साथ इस पर चर्चा कर रहा था मेरी एक सभा में। मैं मनुष्य की क्रम विकास पर बोल रहा था और कहा वो केवल 6000 वर्ष पुराना है। और इस मनुष्य ने कहा भाई ब्रणम, हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये संसार लाखों वर्ष पुराना है, इसलिए वो जिस विषय में आप बात कर रहे हैं आप पूरी तरह से गलत हैं। मैंने कहा क्या आप बाइबल का विश्वास नहीं करते? उसने कहा मैं विश्वास करता हूँ कि मनुष्य ने बाइबल लिखी है। और मैंने कहा सही है कि मनुष्य के हाथों ने अक्षर बनाए हैं, परंतु पवित्र आत्मा हाथ के पीछे था। देखिए अक्षर बनाए क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। और उसने कहा अच्छा, वहाँ आप स्वीकार कर रहे हैं संसार के मामले में वे गलत हैं। मैंने कहा बाइबल कभी भी गलत नहीं है, कभी गलत नहीं। उसने कहा अच्छा, यदि संसार, बोला क्या आप पहाड़ों को देख सकते हैं कि वे ज्वालामुखी से कैसे उभर गए थे? मैंने कहा परंतु आप केवल, उसने कहा और परमेश्वर ने संसार को 6 दिनों में बनाया। मैंने कहा अब बाइबल ने ये नहीं कहा, आपने बस सोच लिया कि इसने ये कहा। मैंने कहा आपके तर्क को तय करने के लिए चलिए हम पीछे की ओर चलते हैं। उत्पत्ति के पहले अध्याय ने कहा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। समय काल, कितने समय से वो ये कर रहा था मैं नहीं जानता, उसने हमें ये नहीं बताया, परंतु आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। समय अवधि तब और संसार था, पेड ऑल, ये जब परमेश्वर ने इसे उपयोग में लाना आरंभ किया, समझे? इसलिए वे बिना बात के माथा पच्ची करते हैं, समझे। परमेश्वर ने संसार बनाया, वो इसे सैकड़ों अरबों वर्षों में बना रह सकता होगा, मैं नहीं जानता कितना समय वो था, परंतु उसने इसे बनाया और उसने नहीं बताया कितने समय में वो था। और ये हमारा मतलब नहीं कि कितना समय ये था। उसने कहा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, समय अवधि ये तय हो गया। इसका बस यही है कितने समय से वो ये कर रहा था ये नहीं, परंतु तब सृष्टि फलने फूलने लगी दूसरे समय में जब उसने आरंभ किया। और मैं विश्वास करता हूँ कि वहाँ हर चीज पृथ्वी पर स्वर्ग को परावर्तित करती है। मैं ये विश्वास करता हूँ क्योंकि आप देखिए हर चीज जीवन के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि एक जीवन है जो कहीं से परावर्तित है। और मैं विश्वास करता हूँ जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उसने छोटी चीजों को परावर्तित किया, जैसे कि पशुओं का जीवन, और अगली चीज जो उसने सृष्टि की थी कुछ भिन्न थी। ठीक इसी प्रकार से बाइबल कहती है उसने ये किया, उसने पहले पेड़ और वनस्पति जीवन बनाया और उसने मनुष्य बनाया, और तब अंतिम चीज जो पृथ्वी में से आई सृष्टि के रूप में मनुष्य था। इसके ऊपर कभी कुछ नहीं आया, क्योंकि क्यों? ये स्वर्ग का सबसे ऊंचा सिद्ध परावर्तन था जो कि परमेश्वर मनुष्य था, समझे? परमेश्वर एक मनुष्य था, इसलिए ये इसे सिद्ध करता है। और जब परमेश्वर हमारे बीच निवास करने के लिए उतर आया वो एक मनुष्य था, समझे? एक मनुष्य, इसलिए ये दर्शाता है कि विकास क्रम की सिद्धता परमेश्वर था जो कि एक मनुष्य है। और तब आप एक पेड़ को लें, आप एक घास और आदि, एक पेड़ लें, ये जीवन के वृक्ष को परावर्तित करता है जो कि स्वर्ग में है। ये सारी चीजें सिद्धता के लिए संघर्ष कर रही हैं। और प्रकृति में हर चीज, जैसा इब्रानियों यहाँ पर कहता है कि चीजें ना दिखने वाली से बनी है, दूसरे शब्दों में वे अलौकिक हैं और अलौकिक स्वाभाविक को परिवर्तित कर रही है, समझे? अब तब स्वाभाविक अनंत थी या ये अलौकिक के साथ सदा के लिए थी, परंतु पाप ने स्वाभाविक को दूषित कर दिया। इसलिए यदि ये इस प्रकार था जो मैं विश्वास करता हूँ ये है, हर चीज जो पृथ्वी पर घटित हो रही है वो आत्मिक चीजों का प्रतीक है जो घटित हो रही है, समझे? इसे किसी चीज को परावर्तित करना है, मनुष्य की उपलब्धि। अब हम पाते हैं जैसे कि स्वाभाविक देह, यहाँ स्वाभाविक देह है, और देह इसलिए बनाई गई कि अपने आप को उत्पन्न करे जो कि बालक थे। और अब स्वाभाविक देह, बालक के स्वाभाविक जन्म में हम पाते हैं कि पहली चीज जो आती है जल है, फिर लहू और फिर जीवन। हम पाते हैं मसीह की आत्मिक देह, पहली चीज जल और लहू और जीवन, न्यायोचित, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। देखिए कैसे ये परावर्तित करता है, सारी स्वाभाविक वस्तुएं आत्मिक चीजों को परावर्तित करती हैं। स्वाभाविक जन्म, उदाहरण के लिए हम लेते हैं मिलने के लिए विवाह, हम ये पाते हैं कि विवाह, हम पाते हैं प्रणय निवेदन और सहमतियां और फिर विवाह, ये सारे समय के लिए तय हो जाना चाहिए। अब यही चीज ये मसीह और कलीसिया के साथ है, समझे? एक प्रणय निवेदन। परमेश्वर हमारे हृदय में बुलाहट भेजता है, हम समर्पित हो जाते हैं। विवाह समारोह और दुल्हन दूल्हे का नाम लेती है, समझे समझे, यही है। ये दुल्हन को बनाता है। अब दुल्हन सदा दूल्हे का नाम लेती है। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम बोल सकते हैं। मेरे पास यहाँ सूची लिखी हुई है। इसे लेने के लिए लगभग 2 घंटे चाहिए और इसके पक्ष में पवित्र वचन, जैसे कि यदि आप चाहते हैं उनमें से कुछ यहाँ इसके पक्ष में है, जैसे 1 यूहन्ना 5:7 जो कि स्वाभाविक और आत्मिक जन्म को दर्शाता है, और आदि आदि। जल, लहू और आत्मा, ये तीनों स्वर्ग में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक हैं। तीन हैं जो यहाँ पृथ्वी पर सहमत हैं। वे एक नहीं हैं, परंतु वे एक में सहमत हैं पृथ्वी में, ये जल, लहू और आत्मा। देखिए, जल, लहू और आत्मा, जैसे कि स्वाभाविक जन्म का प्रतीक। इसलिए यदि एक मनुष्य इस विचार पर रुक जाता है बस न्यायोचित होना ही आपके लिए सब कुछ है, वो गलत है। गलत, उसे गलत होना ही है। और तब यदि कलीसिया, जो बहुत सारे पेंतेकोस्तलों के समान विश्वास करती हैं कि पवित्र आत्मा ये है, बस यही है, बस प्रायश्चित करो और पवित्र आत्मा पाओ, वे अब भी गलत हैं, क्योंकि आपको पवित्र होना ही है, शुद्ध होना, इसके पहले कि पवित्र आत्मा अंदर आए। यदि आप नहीं करते, आप लहू को छोड़ देते हैं, समझे। और नया जन्म, जैसे कि लोग बात करते हैं, नया जन्म, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नया जन्म है, अब ये गलत है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नए जन्म से अलग है। नया जन्म जब आप फिर से जन्म लेते हैं, परंतु पवित्र आत्मा जब सामर्थ उस जन्म में आती है सेवा के लिए, बिल्कुल ठीक, समझे। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाना नया जन्म, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो नया जन्म है, समझे। उस पर विश्वास और उसे अपना बचाने वाला स्वीकार करना, ये जन्म है। देखिए, क्योंकि आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गए। अब यदि आप इसकी सहायता में यूहन्ना 5:24 लेना चाहते हैं, वो जो मेरे वचन सुनता और जिसने मुझे भेजा उसका विश्वास करता है, उसके पास अनंत जीवन है। देखिए, उसके पास जीवन है क्योंकि वो विश्वास करता है, और उसी झुंड को पेंतेकोस्तल पर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने को जाना है। बिल्कुल ठीक, पवित्र आत्मा सेवकाई के लिए सामर्थ है। इसलिए जब आपके विषय में बात होती है कि नया जन्म पाना ही है और इस पर पवित्र आत्मा को लागू करते हैं, बहुत सारे मेथोडिस्ट और आदि आदि, यहाँ पर गलत है, ये नहीं हो सकता, ये वचन के साथ मेल नहीं खाएगा। यहाँ पर आप बातों को एक और ले जाते हैं, इसे उसी प्रकार से लेना है जैसे पवित्र वचन इसे यहाँ पर रखता है, समझे। और पवित्र आत्मा एक, इसके पश्चात आपको नया जन्म प्राप्त करना होगा। क्या नहीं, तुम सामर्थ पाओगे, प्रेरित 1:8, इसके पश्चात पवित्र आत्मा आप पर आएगा, समझे। और उन्होंने पहले ही अनंत जीवन का विश्वास कर लिया था और आदि आदि, परंतु उन्हें सामर्थ के लिए पवित्र आत्मा पाना था। और जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम मेरे गवाह होगे, क्योंकि पवित्र आत्मा पुनरुत्थान का गवाह है। ये दर्शाता है कि आप मसीह में व्यस्त हो गए हैं। अब स्वाभाविक सारी चीजें आत्मिक हैं, सारी घटनाएं और आदि आदि, यह अलौकिक का प्रतीक है, यह स्वाभाविक अलौकिक का प्रतीक है। अब मैं विश्व मेले में गया था, जबकि हम इसके पास ही थे वहाँ स्पोकेन में, और मैंने सोचा मैं अपने परिवार को ले जाऊंगा, क्योंकि मैं केवल एक ही विश्व मेले में था संयुक्त राज्य में, और ये तब जब शिकागो में था, वर्षों पहले होप और मैं गए थे, और हम वहाँ एक दिन भी नहीं रुक पाए। जेब कतरे और सारी चीजें, उनके पास पिन थी जो चाचा के लड़के ने दी थी, और मैं उसके साथ साथ चल रहा था, किसी ने पिन निकाल ली, बस, ये भयानक था। और इसलिए हम एक दिन रुके और वापस आ गए, परंतु विश्व मेले में मैं अपने परिवार को ले गया। ये लुईविल वाले मेले से अधिक नहीं था। वहाँ पर आपने देखा, वे वहाँ अंतरिक्ष सुई के विषय में बातें कर रहे थे, वो कुछ नहीं था, केवल एक एलएसएल भवन में जाना, या ब्राउन भवन में, या कहीं 8 या 10 की लिफ्ट की उड़ान भरना और वापस नीचे आना, यही था वो। और मैं सोचता हूँ कि जनरल इलेक्ट्रिक वाले थे जिनके पास ये था, परंतु वहाँ पर एक बात जो अलग थी, अब जर्मन वाले भी अपना प्रदर्शन कर रहे थे, रूस और दूसरे राष्ट्रों के पास ये था, क्योंकि ये एक विश्व मेला था, जर्मन, फ्रांस, और वे छोटे प्रदर्शन अधिक बड़े कमरे में नहीं थे इससे जहां ये प्रचार मंच रखा है, परंतु वैज्ञानिकों की अपनी उपलब्धियां थी, और विशेष बात की वे तंबाकू के उपयोग पर अभ्यास कर रहे थे। और यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है और वहाँ चला गया और बाहर निकल कर फिर धूम्रपान करता है, तो फिर उस व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ है। जब मैंने उन्हें अपनी आंखों से सिगरेट लेते देखा और उसे मशीन में रखा और तंबाकू के धुएं को खींचा और उसे रसायन की नली में से होकर निकाला और वो सफेद कैंसर से भर गया एक सिगरेट से, और तब उसने कहा, बहुत से लोग कहते हैं समस्त संसार में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। कहा, बहुत से लोग कहते हैं मैं इसे अंदर सांस में भी नहीं लेता। और वैज्ञानिक ने स्वयं एक सिगरेट लेकर उसमें एक कश खींचा और अपनी नाक से नहीं निकाला या जो भी हो, उन्होंने इसे अपने फेफड़ों में उतार लिया परंतु इसे अपने मुंह के अंदर रखा और फिर इसे उन्हीं रसायनों में फूंक दिया। उसमें कैंसर का कुछ नहीं था। कहा, ये कहाँ चला गया? मेरे मुंह में। जब मैंने इसे सटका, ये मेरे पेट में चला गया। उसने कहा, अब तब विचार आया, डॉक्टर क्यों कहते हैं कि सिगरेट नुकसानदायक नहीं है? उसने कहा, कोई भी मनुष्य जो अपना जन्म का अधिकार बेचेगा, एक डॉक्टर इस प्रकार का वक्तव्य देता है, वो सेवानिवृत्त हो सकता है क्योंकि वे सिगरेट की कंपनियों से उसे इतना दे देंगी कि वो सेवा से हट जाए। वास्तव में वो अपना जन्म का अधिकार बेच देता है क्योंकि उसने इस प्रकार की चीजें ना करने की शपथ खाई है, परंतु जो भी है वे से करते हैं। और उसने कहा, अब ये यहाँ पर वो यंत्र है, हम आपको वैज्ञानिक उपलब्धि से ये सिद्ध करके दिखाएंगे। और उनके पास यूल ब्राइन था, आप जानते हैं, वहाँ एक फिल्मी सितारा, वो और अब वो छोटा निकोटीन का पार्सल। उसने कहा, अब वे कहते हैं छलनी वाला सिरा। उसने कहा, एक मनुष्य से जो ये करता है वो बस अपनी मनोस्थिति प्रकट करता है, क्योंकि यदि आपके अंदर कोई धुआं नहीं है, आपके अंदर कोई तारकोल नहीं है और तारकोल धुआं बनाता है, और यदि आप छलनी वाली सिगरेट पी रहे हैं कहाँ, तो ये आपकी संतुष्टि के लिए 3 या 4 पीने पड़ेगी, क्योंकि संतुष्टि के लिए अधिक तारकोल ही चाहिए। यदि आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो वहाँ कोई तारकोल नहीं है, सिगरेट पियेंगे तो तारकोल लेना ही है, इसलिए ये ऐसा है। कहा, पीजिए, यदि आप सिगरेट पीने जा रहे हैं उसे ही पीजिए जिसमें छलनी नहीं लगी है। पाते हैं एक सिगरेट ही संतुष्ट कर देगी जबकि दूसरे की 3 पिए, क्योंकि आप उतना ही कम तारकोल ले रहे हैं। ये बेचने की एक तकनीक है, कुल मिलाकर राष्ट्र बेचने की तकनीक से भरा पड़ा है और गंदगी और सारी चीजें। और तब वहाँ उसने वो लिया और दिखाया कैसे वो एक छोटी गठरी गले या फेफड़ों में आ जाती है, और पहले ये सफेद, फिर ये गुलाबी हो जाती है, फिर गुलाबी से ये बैंगनी हो जाती है। उस छोटी कोशिका के कण कण कांच में से होकर बड़े दिखाई पड़ते हैं, परंतु आप एक शक्तिशाली कांच लेते हैं और उस कोशिका को समतल में देखें, तब वो कहता है जब ये बैंगनी हो जाती है तो आपको कैंसर हो गया। उसने कहा, एक व्यक्ति जो सिगरेट की एक डब्बी एक दिन में पिएगा उसके लिए 70% अधिक संभावना है कि वो कैंसर से मरे, बजाय उसके जो धूम्रपान नहीं करता। ऐसा जोखिम उठाना एक मूर्खता है। अब और तब उसने दूसरी चीजें लेकर सिद्ध कर दिया। वो एक सफेद चूहा लेकर आया और उसने एक सिगरेट ली और उसे एक यंत्र में डाला और उसे सफेद संगमरमर के ऊपर प्रभावित किया और एक रुई का फुहा लिया और उस निकोटीन को लिया जो उस एक सिगरेट से आई और उसको एक चूहे की पीठ पर लेप कर दिया, और हर 7 दिनों में दूसरा चूहा लिया, और हर दिन के पाठ के लिए उन्हें एक लेना था, और उस चूहे को 7 दिनों के लिए रख दिया और उसे निकाला, और चूहे की पीठ कैंसर से इतनी ऊंची हो गई, उनमें से कुछ 7 दिनों तक जी नहीं पाए, चूहा हिल नहीं सका। मैं 2 या 3 दिनों तक खाना नहीं खा पाया उस घिनौनी चीज को देखने पर। वहाँ कैंसर के साथ खड़ा है और ये उसके पैरों की ओर बढ़ रहा है और इस प्रकार की चीजें, एक बड़ा फूला हुआ 1/2 इंच का कैंसर चूहे की पीठ पर, निकोटीन की एक सिगरेट का। और आप सोचते हैं कि इसने इन्हें रोक दिया? वहाँ मेरे बराबर में एक बड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर से पसीना छूट रहा था। बोला, एक प्रकार से प्रभावित करता है ना? मैंने कहा, क्या आप धूम्रपान करते हैं? उसने कहा, जी हाँ श्रीमान, मैं करता हूँ। मैंने कहा, भाई तो फिर तुम्हें ये रोक देना चाहिए। परंतु ये यही है उपलब्धियाँ जो वे ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये वो करता है। अब मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि संसार स्थिर रहता है और यदि सभ्यता टिकी रहती है, पीछे मद निषेध के समय में जब एक विस्की की बोतल के बेचने पर भारी जुर्माना होता था, सिगरेट बेचने पर ये 10 गुना होगा अब से कुछ ही आने वाले वर्षों में, यदि सभ्यता बनी रहती है। ये विस्की शराब से 10 गुना खराब है, निश्चय ही ये है। ये एक हत्यारी जो कि, और आप इस विषय में लोगों को बता सकते हैं और वे इस पर तनिक भी ध्यान नहीं करते। ये तो पवित्र शोर करने वाला प्रचारक है, इसे चलने दो। आप देखिए यही बात है, वे इस पर ध्यान नहीं देते। परंतु मेरा सारांश ये है, जो भी वैज्ञानिक चीजें उपलब्धि प्राप्त करने योग्य हैं, वे यहाँ विश्व के मेले में थीं। वैज्ञानिक शोध से दर्शा रहे थे कि विज्ञान प्रकृति चीजों में क्या उपलब्धि प्राप्त करने योग्य है। अब हम यहाँ आपको आत्मिक शोध से दर्शा रहे हैं कि परमेश्वर योग्य है कि लोगों के साथ जो उसके वचन का विश्वास करेंगे सफलता प्राप्त करेंगे। अब वैज्ञानिक चीजों में उपलब्धि आपको विज्ञान के क्षेत्रों में कार्य करना पड़ेगा, आत्मिक चीजों में उपलब्धि आपको आत्मिक क्षेत्रों में कार्य करना पड़ेगा। अब आप सोचते हैं कि चूहा भयानक दिखाई पड़ा जिस पर यह किया गया। आपको ये देखना चाहिए, काश मेरे पास इसका चित्र होता आपको दिखाता, यदि मैं इसे पा सकता होता। मैं चाहता हूँ वे इसे आपके लिए नहीं चाहेंगे, परंतु ध्यान दें, निस्संदेह चूहा कुछ और घंटे जीवित रहे, उनमें से कुछ एक सप्ताह भी नहीं जिएंगे। परंतु इस पर सोचिए, आप सोचते हैं कि वो विकृत सा दिखा। आपको देखना चाहिए प्राण कैसा दिखाई पड़ेगा जिसने सुसमाचार को अस्वीकार कर दिया। आपको देखना चाहिए वो कितनी भयानक चीज है जो वे हैं। कैसे एक शैतान एक मनुष्य को पकड़ लेता है और उस परमेश्वर के पुत्र को दूषित कर सकता है, एक डरावनी सी चीज में बदल देता है जैसा कि वो परमेश्वर की आंखों में है, और वो 6 फुट लंबा हो सकता है और उसके कंधे मैं नहीं जानता क्या और घुंघराले बाल और क्या, इससे कोई मतलब नहीं। ये जो मनुष्य के अंदर है वो टिकता है, बाहर तो मिट्टी है जो भी हो। इसलिए ये सफलता है, और तब वे दर्शाएंगे उनके पास अंतरिक्ष की सुई और सारी चीजें जो उपलब्धि उन्होंने दिखाई कि वे क्या करने के योग्य हैं, और अपने सारे परमाणु की व्याख्या और आदि आदि। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि शेवरलेट कैसी होगी। जनरल मोटर ने इसका प्रदर्शन किया था, क्या दूसरे में अगली सदी में 20वीं सदी की शेवरलेट कैसे दिखाई पड़ेगी। मुझे ये एक गैस के पाइप जैसी लगी जिसके ऊपर एक उभार हो। अब उन्होंने दर्शाया कि वो कैसे कार्य करेगी और परमाणु शक्ति से प्रज्वलित होगी, एक प्रकार की पंखुड़ी से, और एक दूसरे पर उठेगी और नियंत्रित होगी। ये एक बहुत ही बड़ा लाभ होगा। परंतु मुझे अचरज है कि यदि हम परमेश्वर की पुस्तक के पन्नों को पलट सकें इस प्रातः और देखें उस समय कलीसिया कैसी दिखाई पड़ेगी। देखिए वो सफलताएं जो परमेश्वर ने दिलाई। ओ, इस पृथ्वी पर सदा कैसी घटनाएं घटी। किसी चीज का प्रतिनिधित्व है जो कहीं से आया, परंतु जब ये पृथ्वी पर दिखाई पड़ती है ये अधिकांश दूषित स्थिति में होती है, क्योंकि ये अंधकार के संसार और पाप में है, समझे। परंतु तब एक सच्चा प्रतिनिधित्व आत्मिक क्षेत्र के दूसरे आयाम में है, उन तीनों आयामों के चलते। तब 6वें आयाम में इसका प्रतिनिधित्व है, इससे बहुत ही आनंदित हूँ। अब आइए उन सफलताओं को लें जिन्हें हम इन अंत के वर्षों में करने के योग्य हुए। अब चलिए किसी चीज पर आरंभ करते हैं जो घटित हुई। मैं आपको अधिक देर तक नहीं रोकूंगा, प्रभु ने चाहा तो, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप इसे जल्दी से देख लें। और ओ, जब ये मेरे पास आता है मुझे ऐसा लगता है कि उड़ जाऊं। अब ध्यान दें, अब कुछ वर्षों पहले आवागमन घोड़े और बग्गी के द्वारा था, बहुत अधिक दूर नहीं, अधिक समय। मैंने अपना चलना घोड़े और बग्गी के लगभग किया और एक काठी पर। जब मैं एक लड़का था 15 वर्ष की आयु 16, मैंने घोड़े की सवारी की और मैं शहर के लिए घोड़े और बग्गी में गया। यहाँ इसी आराधनालय में शुरू करके यहाँ एक कच्चा रास्ता और कीचड़, ऊंची ऊंची घासों में होकर लगभग इस भवन की जितनी ऊंची, खेत पर से बीन और चीजों को पहुँचाने। अब मैं कार के इंजन की शक्ति पर आ गया हूँ, कितना अंतर है। घोड़ा और बग्गी का दिन, फिर मोटर गाड़ी का दिन, और अब साथ साथ हवाई जहाज के दिन आए जो पृथ्वी से उठकर हवा में गया। अब यदि आप ध्यान देंगे, जितनी निश्चित ये सफलताएं विज्ञान के द्वारा, यदि कोई व्यक्ति जिसके पास आत्मिक समझ है और समझता है कि ये परमेश्वर के अर्थ प्रबंध का प्रतिनिधित्व अपनी कलीसिया के साथ करता है। अब दिन है, अब स्मरण रखें, संदेश वाहक सदा संदेश के अंत पर आता है। हम ये कलीसिया युगों में जानते हैं, वहाँ हमने ये कैसे लिया। अब घोड़ा और बग्गी के दिन कौन थे? ये लूथरन कलीसियाई युग का अंत थे। देखिए, घोड़ा और बग्गी के दिन उन्होंने न्यायोचितता में विश्वास किया। परमेश्वर कलीसिया को रोमनवाद कैथोलिकवाद से ला रहा था। वो इसे पहली आत्मिक सफलता में लाया। धर्मी विश्वास के द्वारा जिएगा। वे घोड़ा बग्गी के दिन थे, जैसा कि वे आए थे घोड़ा और बग्गी के दिनों में जो समाप्त हुए। अब अगली सफलता परिवहन के मार्ग में मोटरगाड़ी थी। और आप ध्यान देते हैं कि मोटरगाड़ी सारे समय अपनी सामर्थ्य में बढ़ती गई। अब वैसी युग के अंत में आत्मिक सफलता को पवित्रीकरण में लाया गया, जिसका अर्थ कि कलीसिया न्यायोचित की अवस्था से उठकर पवित्रीकरण की अवस्था में आ गई। अब जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि हम स्मरण रखें, कलीसिया जो कलीसिया कहलाती है कलीसिया नहीं है। कलीसिया आत्मिक कलीसिया है। दसियों हजार बार हजारों लूथरन जो कलीसिया में सदस्य बने, जिन्हें न्यायोचित के विषय में कुछ भी नहीं मालूम, नहीं एक सुअर जिसे गद्दी के विषय में नहीं मालूम। और वैसली के युग में कैसे दसियों हजार जो पवित्रीकरण का दावा करते, वे परमेश्वर की पवित्रीकरण की सामर्थ्य के विषय में कुछ नहीं जानते, जैसा एक खरगोश बर्फ के जूते के विषय में। देखिए, वे बिल्कुल भी इस विषय में नहीं जान पाए। परंतु लोग थे जिन्होंने सफलता प्राप्त की। हालेलुया। आप देखिए मैं कहां बढ़ रहा हूं। वहां कोई था जो जानता था कि न्यायोचित का परमेश्वर की दृष्टि में क्या अर्थ है। अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ शांति में। वहां वे कुछ लूथरन थे जो निष्ठावान थे। उन्होंने इसका विश्वास किया। कोई मतलब नहीं कैथोलिक कलीसिया ने क्या कहा। उन्होंने परमेश्वर के वचन का विश्वास किया और उस पर खड़े रहे, क्योंकि उस युग के संदेशवाहक ने प्रचार किया धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और उन्होंने न्यायोचित की अवस्था का विश्वास किया और वे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा योग्य हुए कि न्यायोचित में सफल हों और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ शांति में हों। अब हम फिर से ध्यान देते हैं, फिर साथ साथ मेथोडिस्ट पवित्रीकरण के साथ आए। वहाँ पर बहुत से मेथोडिस्ट थे जो वास्तव में पवित्र हुए थे और उनमें से बहुत सो ने दावा किया और कुछ नहीं जानते थे इस विषय में। मेथोडिस्ट कलीसिया ने पवित्रीकरण सिखाया। उन्होंने कहा वे नम्र हुए और रोए और वापस आए, बोले परमेश्वर की महिमा हो, मैं पवित्र हो गया। और वे फिर से वैसे ही जीवन बिताने लगे जैसा उन्होंने सदा किया। परंतु उनमें से कुछ पुरुष और स्त्रियां वास्तव में संसार की चीजों से पवित्र हो गए थे और एक पवित्र जीवन जिया, एक अलग जीवन। क्यों? वो मोटर गाड़ियों का युग जिसमें अधिक अश्व शक्ति थी। मोटर गाड़ी पुराना टी मॉडल संभवतः 15 या 20 अश्व शक्ति की थी। देखिए 15 या 20 घोड़े एक छोटे से इंजन में इस प्रकार बंद। पवित्रीकरण, जब विज्ञान ने प्रकृति के द्वारा सब कुछ सफलता प्राप्त की, परमेश्वर आत्मिक के द्वारा कुछ प्राप्त कर रहा था। देखिए सारे समय कुछ चल रहा था। और फिर पवित्रीकरण युग के पश्चात, अब हम एक पुराने बिविंगटन के समान एक व्यक्ति को लेते हैं, एक मनुष्य जो पुराने भाई बिविंगटन से अधिक महान था। और जॉन वेस्ली को, जॉर्ज व्हाइटफील्ड, फिनी नॉक्स, बहुत से पुराने मेथोडिस्टों को देखें जिन्होंने पसीना बहाया, जो पृथ्वी पर नरक में से निकले सताओ, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर का वचन पवित्रीकरण को सिखाता है, अनुग्रह का दूसरा कदम। और वे इसके साथ टिके रहे और उन्होंने इसका विश्वास किया और उन्होंने इससे आश्चर्य कर्म किए। वैसे ही जैसे हेनरी फोर्ड और उन्होंने परिवहन के साथ किया, पुरानी टी फोर्ड मॉडल घोड़े के बराबर, वो घोड़े के दिन से आगे बढ़ा और वैसली लूथरन के दिन से आगे बढ़ा। और तब पेंटिकोस्ट आता है, और जैसा कि विश्व का विज्ञान योग्य था कि मोटर गाड़ी की सफलता पाए, राइट बंधुओं ने सिरजा यानी बनाया, बल्कि हवाई जहाज बनाया, उड़ने वाला यंत्र जो जमीन की कार से बहुत ऊपर था, क्योंकि वो हवा में ले गया। अब राइट बंधु अपनी सफलता से होते हुए विज्ञान से लेने के योग्य थे और इस पृथ्वी पर किसी चीज का नमूना ये दर्शाने को कि एक महान आत्मिक चीज घटने के लिए तय है। और जब राइट बंधु सफलता के योग्य थे कि मनुष्य के पैरों को पृथ्वी पर से उसे उठा दे, पेंतेकोस्त उतरा और आत्मिक वरदान के साथ हवा में उठा लिया। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ वो हवा में ले गया। ओ हालेलुया, उसके कदम भूमि पर से उठा दिए ताकि वो आसपास तैर सके। हवा में उठ गया। ओ वो घोड़ा बग्गी से कितनी दूर था, वो परिवहन से कितना ऊपर था, वो ऊपर हवा में था, वो टकरा उछल और भिड़ रहा था, परंतु वो उड़ रहा था। देखिए मनुष्य पृथ्वी पर क्या उपलब्धि प्राप्त करता है, क्योंकि वे चीजों से बने हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। परमेश्वर योग्य था कि आत्मा से भरे हुए लोगों के द्वारा जो भूखे और प्यासे थे और वे वचन के संग बने रहेंगे। अब यदि वेस्ली ने वचन में कदम आगे ना बढ़ाया होता और बदनाम हुआ, पागल मनुष्य कहलाया और सब कुछ, तो वो कभी भी सफलता प्राप्त करने योग्य न होता। परंतु वेस्ली परमेश्वर का एक बड़ा वैज्ञानिक था, लूथर परमेश्वर का एक बड़ा वैज्ञानिक था। उन्होंने चिंता नहीं की कि कलीसियाओं ने क्या कहा, संगठन ने क्या कहा। लूथर ने चिंता नहीं की कि कैथोलिक ने क्या कहा, उसने विश्वास किया। धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहता है, हालेलुया। और उसने वचन में परमेश्वर के रसायन लिए और एक साथ मिलाया और कलीसिया विश्वास के द्वारा आगे बढ़ी। वेस्ली ने लहू के द्वारा इसे एक साथ रखा और लहू के द्वारा सिद्ध किया और कलीसिया पवित्र हो गई। और पेंतिकोस्तलों ने विश्वास किया कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की प्रतिज्ञा तुमसे और तुम्हारी संतानों से जो दूर दूर हैं, और उन्होंने वचन के रसायनों को एक साथ मिलाया और वे हवा में चले गए। हालेलुया, वे बाहर निकल गए क्योंकि वे योग्य ठहरे थे कि इस प्रकार पूरा करने के योग्य हों। अब इन मनुष्यों ने ये क्यों किया? लूथर ने इसे क्यों पाया? वेस्ली ने इसे क्यों पाया? क्योंकि सामग्री यहाँ पृथ्वी पर रखी थी जो टी मॉडल फोर्ड को बना सकती थी। यहाँ बिजली थी जो कार को दौड़ा सकती थी। पृथ्वी में तेल था, यहाँ पिस्टन और आदि आदि था, सारे यांत्रिकी, जनरेटर के लिए कार्बन और हर चीज। उन्हें ये सारे सामानों की रचना करनी थी। और ध्यान दें, ये आरंभ हो गया, इसे बनाया, बल्कि इसकी रचना नहीं की। परमेश्वर रचियता है, उसी ने ये यहाँ रखा था। परंतु मनुष्य जिसने इस प्रकृति के वैज्ञानिक आयाम में विश्वास किया, इसमें छानबीन की, और वे उत्तर के लिए ना को नहीं लेंगे, उन्होंने इसका विश्वास किया। उनके हृदय में इसका प्रकाशन था और वे इसके साथ बने रहे जब तक कि उन्होंने प्रमाणित नहीं कर दिया कि ये ठीक था। इसी प्रकार से जॉन वेस्ली ने पवित्रीकरण को सिद्ध कर दिया। सामग्री यहाँ पर रखी थी, परमेश्वर का वचन इसे लेकर आया, उसने इसका विश्वास किया। कोई मतलब नहीं यदि सारी कलीसिया, एंग्लिकन कलीसिया, सब ने इसे अस्वीकार कर दिया। वो अपने विश्वास पर बना रहा और उसने ये सिद्ध कर दिया, और पेंतिकोस्तल आसपास आए और सिद्ध किया, क्योंकि उनके पास सामग्री थी कि पवित्र आत्मा सही था और वे हवा में ले लिए गए। क्या आपने ध्यान दिया? उनमें से एक वैज्ञानिक सफलता ने दूसरे के साथ चली, दूसरे के लिए पूरक बनी। ये केवल एक उन्नत रूप था, समझे? मोटर गाड़ी परिवहन का एक उन्नत रूप था बजाय घोड़े के, और हवाई जहाज परिवहन का उन्नत रूप था बजाय मोटर गाड़ी के। परंतु वे दूसरे के साथ साथ रहे। अश्व शक्ति, आमीन। यदि वो अश्व शक्ति परमेश्वर की शक्ति के विषय में क्या है, तो फिर पवित्र आत्मा और सामर्थ के विषय में क्या है? एक पवित्र आत्मा की सामर्थ जो आपको न्यायोचित ठहरा सकती है, वही पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको पवित्र कर सकती है। वही पवित्र आत्मा की सामर्थ जिसने आपको पवित्र किया, वो उसकी उपस्थिति से आपको भर सकती है। और छोटा विज्ञान जो अपना क्या कहा गया नहीं जानते, इसे पा लिया। क्यों? वे आत्मिक वैज्ञानिक थे, आमीन। उन्होंने चीजों को देखा, उन्होंने इसका विश्वास किया। मनुष्य ने इसे शिक्षा के द्वारा किया, प्राकृतिक वैज्ञानिक, आत्मिक वैज्ञानिक ने इसे प्रकाशन के द्वारा किया, एक शिक्षा के द्वारा, दूसरा प्रकाशन के द्वारा। और यदि हम इसे खोल सकें, यहाँ सब प्रकार की सामग्री यहाँ पर रखी है, ये ठीक बात है। अब हम ध्यान देते हैं, ये कैसे जाता है, कैसे परमेश्वर इसे प्राप्त करने की योग्य था। पेंतिकोस्तलों में हवा में उठा लिए गए, कैसे वे तब वापस कलीसिया में लाए गए। चंगाई, अन्य भाषाओं में बोलना, प्रकाशन, वरदान पवित्र आत्मा के, जो कि लूथर इस विषय में कुछ नहीं जानता था, ना वेसली ने जाना, उन्हें ये कभी नहीं सिखाया गया, उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं जाना, ये उनके युग से बाहर था। क्यों? हेनरी फोर्ड उन दिनों में हवाई जहाज के विषय में क्या जानेगा, इसके पहले की राइड बंधु हुए, देखिए, उन्हें ये नहीं मालूम हुआ होगा। तब वही बात जो मनुष्य वहाँ पीछे थे और घोड़ा और बग्घी चला रहे थे 500 वर्षों पहले, वो बिना घोड़े की गाड़ी के विषय में कुछ नहीं जानता, केवल बाइबल ने कहा ये वहाँ पर होगा। इसलिए वे योग्य थे कि वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा सफलता पाएं। और जब ये पृथ्वी पर घटित हुआ, परमेश्वर ने इसका प्रतिनिधित्व उसकी कलीसिया की उपलब्धि के द्वारा किया। वो चीजें जो दिखाई पड़ती हैं, उन चीजों से बनी है जो दिखाई नहीं पड़ती। इसका परावर्तन देखिए। अब पेंतिकोस्तल युग, पिछले 50 वर्षों में उसने समस्त संसार में एक बेदारी भेजी। इसमें सब प्रकार की चीजें थी और उनके पास चंगाइयां थीं, बीमारियां चंगी हो गईं, अपाहिज चंगे हुए, अंधों की आंखें वापस आ गईं। क्या आप सोचते हैं संसार इसका विश्वास करेगा? नहीं श्रीमान, उन्होंने लूथर का विश्वास नहीं किया, उन्होंने वेस्ली का विश्वास नहीं किया, उन्होंने पेंतिकोस्तलों का विश्वास नहीं किया। परंतु परमेश्वर ने अपने अनुसंधान में बाइबल को लिया, एक मनुष्य जो इसे करना चाह रहा था बाइबल को लिया और सिद्ध किया कि ये सही था। आमीन। अब हमें स्मरण करना है कि हमें इसका विश्वास करना है, इन चीजों को देखते हुए कि ये प्रतीक थी। अब हम पेंतिकोस्तल युग को जी चुके हैं। पेंतिकोस्तल युग, जैसे कि मैंने वहाँ सिद्ध किया, लुदिकियाई युग में चला जाता है। परंतु अब कुछ और घटित हुआ है। अब हमारे पास अंतरिक्ष यात्री हैं। जॉन ग्लेन हमारा पहला अंतरिक्ष यात्री था और हमने पाया कि यह हवाई जहाज से बहुत ऊपर है। हवाई जहाज केवल वहीं तक जा सकता है जहां दबाव और आदि आदि है, परंतु ये परमाणु शक्ति से है, एक बड़ी सामर्थ्य जो उसे हवाई जहाज से बहुत ऊपर उठाती है, और यहां तक कि उसमें हवाई जहाज नहीं है, ये ठीक बात है, वो इसे करने के योग्य है। ठीक है, अब हमारे पास अंतरिक्ष यात्री हैं, स्वाभाविक युग, और स्मरण रहे, संदेशवाहक पहले वाले संदेशवाहक के सदा अंत में आता है। हमने यहाँ ये सिद्ध किया है, अब हम अंतरिक्ष की पंक्ति में हैं। आमीन और आमीन। परमेश्वर, विज्ञान इस बात को सिद्ध करने के योग्य है कि एक अंतरिक्ष यात्री इतनी दूर जा सकता है जहाँ तक कि आप उसे अपनी स्वाभाविक आंखों से नहीं देख सकते, और ये जा सकता है भले ही दाब हो या ना हो, वो बस बाहर निकल सकता है क्योंकि उस दाब युक्त टैंक में, और वो ऊपर जा सकता है और चारों ओर तैरता है और संसार को चारों ओर से देखता है, एक अंतरिक्ष यात्री। ओ प्रभु, क्या ही युग आ रहा है। जी हाँ श्रीमान, किसी भी प्राकृतिक चीज से बहुत आगे, साहूल की सीध में बाहर दूर। ये क्या दर्शाता है? एक आत्मिक युग, एक आत्मिक समय जहां परमेश्वर आत्मिक अंतरिक्ष यात्री को लेने जा रहा है। आमीन। वे ठीक अब यहां पर है। हालेलुया। हवा के उकाब जो किसी भी चिड़िया से आगे जा सकते हैं, हर चीज के ऊपर तैर रहे हैं, आत्मिक अंतरिक्ष यात्री। महिमा हो, जो परमेश्वर का वचन ले सकता है और ये सिद्ध करता है कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है, एक आत्मिक अंतरिक्ष यात्री। ओ प्रभु, महिमा हो। इससे मुझे अच्छा अनुभव होता है कि इस युग में जी रहा हूँ। अब अंतरिक्ष यात्रियों के लिए क्या आश्चर्यजनक चीज है, समझे? ये क्या है? स्वाभाविक वैज्ञानिकों ने क्या किया? इस चीज में सफल होने के योग्य हुए और परमेश्वर में होकर, जो बाइबल के साथ स्थिर रहेगा और ये कहता है वो कल, आज और सर्वदा एक सा है, चाहे जो हो, प्रतिज्ञा से डरता नहीं कि किसने ये क्या कहा, इसी के साथ टिका रहा। ये क्या है? आप एक अंतरिक्ष यात्री हो गए जो इतनी दूर जा सकता है, ये नामधारी विचार से, ये किसी भी चीज से आगे है, ये कलीसिया की चीजों से आगे है, वहाँ परमेश्वर के साथ, केवल उसके संग आप अकेले टिकते हैं, अंतरिक्ष यात्री। और स्मरण रखें, अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उन्हें एक टैंक में जाना होता है और वे अपना नियंत्रण नहीं कर सकते, ये रडार की शक्ति को लेता है, एक परमाणु शक्ति उसे उठाती है बाहर दूर अंतरिक्ष में, और वो फिर वो एक मीनार के द्वारा नियंत्रित किया गया। महिमा हो, परमेश्वर के आत्मिक अंतरिक्ष यात्री वैसे ही हैं। वे एक टैंक में आए, एक स्थान में, एक देह में, एक देह और मसीह की देह। तब ये वे नहीं हैं, ये नहीं, ये जॉन ग्लेन नहीं था, ये वो टैंक था जिसके अंदर वो था, ये यंत्र था, वो बस वहाँ बैठा था, उसने कुछ नहीं किया। उसके पास एक वास्तविक शुद्ध साहस था कि वहाँ हो और कहता है ये ठीक है, क्योंकि विज्ञान ने इसे सिद्ध कर दिया था। परमेश्वर चाहता है मनुष्य जो मसीह में आ सके और ये विश्वास करे कि वो कल आज और सर्वदा एक सा है और अपने विचार नहीं लेता और अंतरिक्ष में चले गए पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित किए गए। आमीन। अंतरिक्ष यात्री, ये पीछे पुराने घोड़े बग्गी से कितनी दूर है, ये कितनी दूर, यहाँ तक कि हवाई जहाज से, ये न्यायोचित पवित्रीकरण और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से कितनी दूर। वे उकाब पर आ रहे हैं। पहले वे छिपकली थे, फिर वे चूजे हो गए, फिर वे कौवे हो गए, परंतु अब वे उकाब हैं। उनके पीछे कोई नहीं जा सकता। एक उकाब विशेष चिड़िया है, वो किसी भी चिड़िया से ऊपर जा सकता है, उसे देखने के लिए तैयार किया गया है। जब ये वहाँ पहुँच जाता है, ये अपना सर एक स्तर पर ले आता है। कुछ लोग हैं जो ऊंचा कूद सकते हैं, वहाँ पहुँचकर उन्हें नहीं मालूम कि वे कहाँ हैं, क्योंकि वे आगे और नहीं देख सकते, तो फिर किस लिए कूदा। परंतु वहाँ कुछ है जो पीछे देख सकते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये उकाब है, वो वहाँ खड़ा रह सकता है जब तक वो उसे देखता है और प्रतीक्षा करता है, जब तक संदेश नहीं सुनता जो उसे बताता है कि क्या करना है। वो परमेश्वर का अंतरिक्ष यात्री है, समझे, ये सारी सफलताओं का अनुकरण करता है, तो फिर इस सफलता का अनुकरण क्यों नहीं करेगा। यीशु के लिए अंतरिक्ष यात्री, आमीन। यहाँ तक कि अपनी शक्ति से भी नहीं छोड़ा जाता, वो प्रेक्षित किया गया, वो केवल एक कार्य करता है कि वो उसमें चला जाता है। आपको बस यही करना है कि उसमें चले जाएं। परमेश्वर ही उसे दागेगा और स्थापित करेगा। इसमें पेट्रोल की ताकत नहीं होती है, न ही किसी कलीसिया का मत्सार। ये परमेश्वर की परमाणु शक्ति जो आपको अंतरिक्ष में आगे को धकेलती है, आमीन। ओह क्यों, ये क्या है, ये अंतरिक्ष यात्री, इनके पास इन्हें कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। जरा शब्द न्यायोचित को ले, जरा शब्द पवित्रीकरण को, वो सारी बाइबल को लेगा, आमीन। वो इस समय मिलेगा क्योंकि ये वो जानता है कि परमेश्वर हर प्रतिज्ञा को पूरा करने योग्य है जो उसने कभी की। वो बस वहाँ बैठकर और प्रतीक्षा करता है। ओ प्रभु, वचन अपने आप में प्रकट होने के लिए बाध्य है। यदि आप बीमार हैं और एक अंतरिक्ष यात्री, स्मरण रखें, मसीह में आ जाएं, उल्टी गिनती की प्रतीक्षा करें, बस वो गोली को दाग देगा, चिंता न करें, अब सफलता के योग्य हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है। अब अंतरिक्ष यात्री कितना बड़ा है, ये चीज है। अब पुरानी अश्व शक्ति से, मोटर गाड़ी की शक्ति और हवाई जहाज की शक्ति, अब देखिए, वो अंतरिक्ष यात्री वो इतना ऊंचा है कि वो चीजों को देख सकता है जो एक मनुष्य घोड़े पर और बग्गी पर नहीं देख सकता। वो इतने ऊंचे पर है कि वो उन चीजों को देख सकता है जो मोटर गाड़ी में बैठा मनुष्य नहीं देख सकता। वो इतने ऊंचे पर है कि वो उन चीजों को देख सकता है एक मनुष्य जो हवाई जहाज में उड़ रहा नहीं देख सकता। ये तो तर्क आदि से आगे निकल गया, आमीन, महिमा हो। यही है, वो किसी भी उपलब्धि से आगे है जो मनुष्य सोच सकता है। संगठन, नामधारी, आपको मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट होना पड़ेगा या इससे संबंधित होना पड़ेगा, एकवाद, दोवाद या ये जो भी है, वो एक अंतरिक्ष यात्री है। वो तो किसी रेखा से दूर अंतरिक्ष में तैर रहा है, आमीन। मैं कितना धन्यवादित हूँ। और स्मरण रखें, अंतरिक्ष यात्री रडार की सामर्थ से नियंत्रित किया जाता है। आपने उन्हें देखा, जॉन ग्लेन को अंदर लाए, मैंने कैप कैनावेरल में देखा और उस बड़े रडार चीज को देखा। आप उसे कहीं भी नहीं देख सकते, परंतु आप रडार से बता सकते हैं कि वो कहां पर था, चिन्हित करते हैं, यही जहां पर वो था, समझे। और हमारे पास एक रडार भी है, प्रार्थना, प्रार्थना रडार की सामर्थ है जो अंतरिक्ष यात्री को निर्देशन देता है, मेरे नाम में पिता से कुछ भी मांगो, मैं ये करूंगा, समझे। जरा ध्यान दें, जिस प्रकार से प्रार्थना जा रही है, आप उस मार्ग को देख सकते हैं जिधर वो निर्देशन दे रहा है, आमीन। बस विधि पर ध्यान दें कि कलीसिया प्रार्थना कर रही है। आप उस मार्ग को देख सकते हैं जहां प्रक्षेपात्र उड़ेगा। आप बता सकते हैं जिस प्रकार से अंतरिक्ष यात्री यात्रा कर रहे हैं, जिस प्रकार से कलीसिया प्रार्थना कर रही है, वो प्रार्थना करता है, प्रभु निसंदेह हम लोग इन बातों का विश्वास नहीं करते। ओ, वो अंतरिक्ष यात्री नीचे आ रहा है, बस यही है ओ भाई। परंतु जब सारी चीजें संभव हैं, प्रभु अपना आत्मा कलीसिया पर उंडेल दे और हमें वो दे जिस चीज की हमें आवश्यकता है। हम पर पवित्र आत्मा उंडेल दे और हमें हर तर्क से बाहर कर दे और ये विश्वास करें कि वचन ही सही है और हम ठीक उसी के पक्ष में खड़े होने जा रहे हैं। पर्दे पर ध्यान दें, फिर उसके सिर को इस प्रकार से उठने दें। देखिए, अंतरिक्ष यात्री आगे आगे और आगे बढ़ रहा है। ऊपर हवा में हूँ, शानदार, किसी भी क्षेत्र से आगे जा रहा है, किसी भी मत्सार से आगे जा रहा है। अब स्मरण रखें, न्यायोचित का मत्सार में विशेष स्थान है। ये ठीक बात है, आप न्यायोचित का विश्वास करते हैं जैसे कहीं लूथरनों और उनके अधीन वालों ने किया। यही जो वे थे, अधीनताओं में थे, परंतु वे अब भी धरातल से नहीं उठे। आप पवित्रीकरण और उसके अधीन वालों को ले सकते हैं, उन अधीनस्थों का लूथरन से क्या भाई, चर्च ऑफ क्राइस्ट और वो झुंड वहाँ है, अधीनस्थों का वेस्ली से क्या, मेथोडिस्टों से इस प्रकार, नेजरिन, पिलिग्रम, होलीनेस, उनके अधीन वाले, और तब पेंटिकॉस्टल और उनके अधीन वाले, हवाई जहाज, नीचे वननेस, टूनेस, थ्रीनेस, फोरनेस और ऊपर बढ़े, फोर स्क्वायर, चर्च ऑफ गॉड, वे सारे मत्सार धारण किए नामधारी में। परंतु अंतरिक्ष यात्री ध्वनि सीमा को तोड़ता है, वो तो बस निकलता चला जाता है, वो कुछ नहीं सुनता। ओ प्रभु, वो इस सबसे आगे जाता है। देखिए, वो वहाँ ऊपर जहाँ सारी चीजें, वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। जी हाँ श्रीमान, उसने इसकी प्रतिज्ञा की है। उसका वचन कहता है कि वो महायाजक है। आप उस महान बड़े रडार को देखते हैं, वहाँ बाहर बैठा हुआ बढ़ रहा है। सभा में उस पर ध्यान दें। आप देख सकते हैं जब पवित्र आत्मा नीचे उतरता है अग्नि स्तंभ के रूप में, जैसे उसने प्रतिज्ञा दी, एक वहाँ बैठने नहीं जा रहा है कि तर्क करने की कोशिश करे विज्ञान के साथ, एक वास्तविक विश्वासी। वो क्या है? वो रडार का पर्दा है, उस पर ध्यान दें। उसने आसपास संकेत करना आरंभ कर दिया, आमीन, और वो उस अंतरिक्ष यात्री को पकड़ता है। आपको कैंसर है, आपको अमुक अमुक है, आप अमुक अमुक ऐसे स्थान से, प्रभु यीशु आपको चंगा करता है, हालेलुया। वो तैर गया अंतरिक्ष यात्री। ओ प्रभु, ये कलीसिया कैसी होनी चाहिए, ये यहाँ पर है। वो सफलता जो विज्ञान के द्वारा प्रमाणित हुई, उन्होंने वहाँ विश्व मेले में दिखा दिया, हमारे पास है, आमीन। ये हर जगह सिद्ध किया जा रहा है, अंतरिक्ष यात्री युग जिसमें हम जी रहे हैं। देखिए, ये उन चीजों से बना है जो दिखाई नहीं पड़ती। देखिए, ये उन चीजों से बना है जो स्वर्ग से हैं। ये स्वयं परमेश्वर है, आप छठवें आयाम में हैं, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम इस प्रकार के स्थान में हैं, जब तक हम दूसरे आयाम में उठाए नहीं जाते, उन चीजों से आगे जो हमें कब्र की ओर ले जा रही हैं, और रोना, ये चीजें दरवाजे की कुंडी पर पीता बांधना है, और सदा के लिए अलविदा। हालेलुया, हम अंतरिक्ष यात्री हो गए और वहाँ दूर के लिए रवाना हो गए और देखा कि ये कहाँ है, वापस आ गए, महिमा हो। और आकाश के पार हम अपने घर को जा रहे हैं, मनुष्य के तर्कों से दूर, कैसे ये पलक झपकते ही पुराना बदल जाएगा। हम उन्हें वहाँ पर देखेंगे, बूढ़े मनुष्य और स्त्रियाँ फिर से युवा। आप कैसे जानते हैं, बाइबल ये सिखाती है, और परमेश्वर एक अंतरिक्ष यात्री को वहाँ दागता है। हम जानते हैं इस सब के विषय में क्या है, वापस आए। वहाँ पर मरने की चिंता नहीं, मरना कुछ नहीं है, निश्चय ही ये जीना है। जी हाँ श्रीमान, ये बस अपने पैरों को भूमि पर से उठाना है ताकि हम जा सकें। ओ कितना आश्चर्यजनक, उसने सारी बातों की प्रतिज्ञा वचन में की है, क्योंकि इब्रानी 13:8 ने कहा, वो कल आज और सर्वदा एक सा है। वे बातें जिसके लिए वो योग्य था, परमेश्वर एक मनुष्य के द्वारा सफलता प्राप्त कर सका, जो अपने आप को इसके लिए समर्पित कर सके, परमेश्वर के वचन के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बीती रात्रि कहा, वो सदा वचन के साथ खड़ा हुआ है। अब क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री वास्तव में नई चीज नहीं है? एलिशा के विषय में क्या है? यदि वो अंतरिक्ष यात्री ना होता, मैंने कभी नहीं देखा। वो वहाँ गया जहाँ जॉन ग्लेन कभी नहीं सोचा कि वो जाएगा। भाई आप जानते हैं, उनके पास एक था जो एक बार धीमी गति से उठा लिया गया, उसका नाम हनोक था, वो बस ऊपर चला गया, परंतु वो एक अंतरिक्ष यात्री था, निश्चय ही। वो दाबयुक्त किया गया था, उसे बदलना नहीं था, कुछ नहीं, नहीं, वो पहले ही दाबयुक्त हो गया था जब उसने चलना आरंभ किया। वो सारे आयामों से निकलता चला गया, और सारी चीजों से परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया। और इसलिए एक बूढ़ा व्यक्ति थक गया था और अधिक अच्छी प्रकार से नहीं चल सकता था। उसका इजाबेल से विवाद था और उसके छोटे बाल और रंग और हर चीज, जब तक कि परमेश्वर ने उसके लिए रथ नीचे नहीं भेज दिया, कहा मैं तुझे बादलों से होकर तुझे चढ़ा लूंगा। इस दोपहर बाद एक अंतरिक्ष यात्री एक बार एक हम सब बाकियों के लिए मरने आया और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिला दिया और 500 मनुष्य वहाँ पर खड़े थे और उसे बादलों पर उठते हुए देखा एक आवाज के साथ जो कह रही थी मैं फिर से आऊंगा। और स्वर्गदूत वापस आए और बोले यही यीशु जो उठा लिया गया था वो मुख्य अंतरिक्ष यात्री फिर से इसी प्रकार से वापस आएगा, उसी प्रकार का घर जिसमें वो है, एक देह अविनाशी। हालेलुया। और हमें भी एक देह मिलेगी उसकी महिमामय देह के समान, क्योंकि उसको हम वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। ओ हालेलुया। उसने सारी ध्वनि की सीमाएं तोड़ डाली, सारे तर्क की रुकावटें, और तर्क से आगे निकल गया, किसी भी चीज से आगे निकल गया। और कोई भी मनुष्य जो कभी परमेश्वर के लिए जिया, उसे किन्हीं भी पांच चेतनाओं के आगे जाना होगा, उसे किसी शिक्षा पर जाना होगा, किसी सफलता पर जो मनुष्य करने के योग्य है और परमेश्वर पर विश्वास करता है, हर चीज को तोड़ और एक और रख देता है और स्वर्ग को निकल जाता है। आमीन। ओ क्या ही अंतरिक्ष यात्री और आदि आदि स्वाभाविक में सफलता प्राप्त की। परमेश्वर इसे अपनी कलीसिया के द्वारा करने के योग्य हुआ, आत्मिक के द्वारा, एक आत्मिक लोगों के द्वारा जो विश्वास करेंगे। कोई भी पुरुष या महिला जो किसी भी समय साहस करेगा, किसी भी समय परमेश्वर को उसके वचन पर लेता है, वो एक अंतरिक्ष यात्री है। वे कहेंगे ओह क्या ये तर्क संगत नहीं है, उन लोगों को सुने रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इसे सुने, ओह ये तो तर्क संगत भी नहीं है, ये नहीं समझता। किसी ने मुझे बताया, कहा भाई बनम आपने स्वप्न देखा जब आपने वो स्थान देखा। मैंने कभी कोई स्वप्न नहीं देखा, मैं वहाँ खड़ा हुआ था नीचे, जहाँ मैं पलंग पर पड़ा था नीचे देख रहा था। मैं पलंग पर स्वप्न देख सकता था, परंतु मैं यहाँ ऊपर था नीचे अपने आप को देख रहा था, समझे। उस प्रातः उसने मुझे अंतरिक्ष यात्री वाली सवारी करा दी, मुझे दिखाया कि मुझे कहाँ जाना था, और इसने ये दिखाया कि आपका रडार इस पर संकेत करेगा ठीक जहाँ पर ये है। अब ये मैं नहीं, ये वो है। ये आपका आत्मा आपके अंदर इस संदेश का विश्वास कर रहा है और ये पवित्र आत्मा यहाँ खड़ा है जहाँ मैं हूँ, और आप इसका इस प्रकार विश्वास करते हैं और ये संपर्क करता है और यहाँ से फिर वापस आता है, आपका उत्तर अंतरिक्ष यात्री। आमीन। ओ कितना आश्चर्यजनक। जी हाँ श्रीमान, महान विज्ञान ने महान चीजें की हैं और आप जानते हैं उन्होंने इतना महान किया जब तक कि वे उससे नहीं डरने लगे। ये ठीक बात है, वे इतने अधिक महानतम हो गए यहाँ तक वे उनसे डरने लगे। आप जानते हैं ये उन्होंने लगभग 2 वर्षों पहले कहा, ये आधी रात के 3 मिनट पहले। वे डर गए, वे क्या कर रहे थे। अब मनुष्य योग्य हो गया अपने स्वाभाविक में, स्वाभाविक अंतरिक्ष यात्री। अब वो इस अंतरिक्ष यात्री की सफलता पाने में योग्य हो गया है। अब वो सोचता है जब कभी रूस ने राष्ट्र को ध्वस्त करना आरंभ किया या किसी और राष्ट्र को, वो चांद की यात्रा पे निकलने वाला है। मैंने एक छोटी सुंदर चीज उस दिन देखी, ये वास्तव में सुंदर थी। वो दो छोटे से इंडियन खड़े हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। आप जानते हैं छोटे निकले हुए पेट इस प्रकार से और उनके सिर के पीछे पंख, और बस एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, एक दूसरे को थपथपा रहे थे। बोले भाई बहुत जल्दी ही हमारा देश हमें वापस मिल जाएगा, श्वेत लोग चांद पे जा रहे हैं। कहा जल्दी हमारा देश हमें फिर से वापस मिलने वाला है, श्वेत लोग चांद पे जा रहे हैं, इस प्रकार हमारा देश हमें फिर से मिलने वाला है। ये ठीक है। ओह अब वे सब चाहते हैं कि सारे के सारे वे अंतरिक्ष यात्रा के डिब्बे बनाकर वे इसमें घुस सकते हैं, और परमाणु युग आता है, वे इस धरती को नष्ट करने जा रहे हैं, वे बस इसे खींचेंगे और सारे चांद पर चले जाएंगे, चांद की यात्रा पर, और इस सब के साथ इस प्रकार से चांद पर एक नई अर्थव्यवस्था बनाएंगे। वे वहां जाने वाले हैं। मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास नहीं करता कि ये कभी वहां पहुंचेंगे, समझे। परंतु उसी समय में एक वास्तविक सच्चा मसीह में विश्वासी अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। आमीन। एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने एक ही अंतरिक्ष यात्री में बपतिस्मा लिया। ओ एक देह, ये किसी भी दाब में टिके रह सकते हैं। उन्होंने इसे जलती भट्टी में परख लिया, ये आग में टिका रहेगा, इसलिए ये जल नहीं सकता। 7 गुना गर्म इन्होंने इसे हर चीज में परख लिया, सही सलामत बाहर आ गए। इसलिए आत्मिक वैज्ञानिक सिद्ध करने योग्य ठहरे कि वे किसी भी स्थिति में टिके रह सकते हैं। इसलिए वास्तविक आत्मिक विश्वासी अपने साथ ही रखता है और परमेश्वर की अंतरिक्ष यात्रा में आ जाता है, मसीह में सारी बातों का विश्वास कर रहा है। अपने मतसारों को एक तरफ रख दिया, पेंटिकॉस्टल मतसार, बैप्टिस्ट मतसार, मेथोडिस्ट मतसार, वो बस अंतरिक्ष यान में आ गया। कह रहा है, प्रभु ये कब तैयार है? ओ प्रभु, वो क्या कर रहा है? वो छोटी सभाओं में आ रहा है, ये उल्टी गिनती सुन रहा है परमेश्वर के वचन की। अब जानते हैं, जब जॉन ग्लेन वहाँ उस प्रातः बैठ गया, वे उल्टी गिनती को सुन रहे थे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, समझे। जब वे ऐसे स्थान पर आ गए जहाँ वे कहता है ये 3 मिनट हैं, जब तक कुछ उठने वाला है। वे नहीं जानते कि ये क्या है 3 मिनट, जब तक कि हमारे पास शून्य घड़ी ना हो। अब ध्यान दें, वास्तविक विश्वासी मसीह में है। जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वचन प्रचार करें, वचन के साथ बने रहे। मैं चिंता नहीं करता नामधारी क्या कहता है, वे इसका विश्वास करने जा रहे हैं, वे ठीक वहीं खड़े होंगे क्योंकि ये वचन है। नामधारियों ने एक बड़ा विवाद आरंभ किया और उन्हें बाहर निकाल दिया, उन लोगों को बाहर भगा दिया और कहते हैं ये लोग पागल हैं, इस प्रकार से हर चीज। परंतु वे ठीक वचन के साथ बने रहते हैं, जब तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा बनी रहती है वे वहीं बने रहते हैं, क्योंकि वे अंतरिक्ष यात्री हैं, वे वचन का विश्वास करते हैं। और उनसे बचने की कोई विधि नहीं, जो भी है वे आपको छोड़ने जा रहे हैं, इसलिए बस उन्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। परंतु वे वहाँ पर हैं, मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, उल्टी गिनती को सुन रहे हैं, कलीसिया युग और आदि आदि, महिमा हो। आपको अच्छा अनुभव होता है क्या नहीं, उल्टी गिनती को सुन रहे हैं? उल्टी गिनती क्या है? इन सारी बातों की प्रतिज्ञा दी गई थी यही जहां ये घटित हुई, सारी चीजों की प्रतिज्ञा दी गई यही जहां ये घटित हुई, जहां पर प्रतिज्ञा है यही जहां ये घटित हुआ। वो सफलता जिसकी आज प्रतिज्ञा दी गई, ये ठीक यहाँ हमारे बीच में है। वे क्या कर रहे हैं? उल्टी गिनती सुन रहे हैं। ये कितनी दूर तक आ गया? लूथर से होता हुआ उल्टी गिनती, न्यायोचित, पवित्रीकरण, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ऊपर जाओ। वे क्या कर रहे हैं? उठने की प्रतीक्षा, शून्यकाल, आमीन। ये महान परिक्रमा की कलीसिया इसे करने के लिए तैयार हो रही है, और उल्टी गिनती का महान समय। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ उल्टी गिनती को मैं क्या सोचता हूँ। अब मैं सोचता हूँ हम यहाँ इस कलीसिया में से होते हुए, और अब आप ध्यान दें, जब स्वाभाविक अंतरिक्ष यात्री तैयार हो रहा है कि धरती को छोड़े, वहाँ उल्टी गिनती 10 से वापस शून्य को आरंभ हो रही है। अब मैंने इस संदेश को तोड़ने की कोशिश नहीं की और इसे एक आत्मिक प्रयोग दिया, जैसा कि इसने प्रातः में बहुत समय लिया, परंतु मैं इसे आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। वो 10 अंक संसारिकता का अंक है मनुष्य, परंतु 7 परमेश्वर का सिद्ध अंक है। 6 दिनों में उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें में उसने विश्राम किया, और 6000 वर्षों संसार को पाप के विरोध में परिश्रम करना, या कलीसिया ने पाप के विरुद्ध परिश्रम किया, और 7वां सहस्र शताब्दी है, सबत। 7 परमेश्वर का सिद्ध अंक है, और अब उसने हमें सही उल्टी गिनती दी है, और उसकी उल्टी गिनती 10 नहीं है परंतु 7 है। हमने हाल ही में 7 कलीसियाई कालों से होते हुए देखा। अब हम पाते हैं और प्रकाशित वाक्य में, पहले उल्टी गिनती पहला युग था, दूसरी उल्टी गिनती दूसरा युग, और 7वीं उल्टी गिनती में, और यहाँ हमारे सामने दिखता है, जैसा कि चित्र बनाया गया, कि हमारे पास ये उल्टी गिनती है। पहला अंक इफिसुस गिना गया, दूसरा अंक स्मुर्ना गिना गया था, स्मुर्ना, तब पिर्गमुस, थुआथीरा, 5वां सार्दिस था, 6वां फिलेडेल्फिया था, और 7वां लुदिकियन, अंतिम कलीसिया युग। तब ये शून्य समय कलीसिया के लिए कि छोड़कर निकले, कलीसिया युगों को उनका समय पूर्ण हो जाने के पश्चात। अब हम जानते हैं थुआथीरा युग आया और चला गया, इफिसियों का युग आया और चला गया, फिलेडेल्फियन युग आया और चला गया, और हम 7वीं कलीसियाई काल में हैं, इसका अंत लुदिकियाई कलीसिया युग, और ये उल्टी गिनती है। यदि अब अपने पिछले पाठ कलीसियाओं पर ध्यान देते हैं, उसने अपने हाथ में 7 तारे पकड़े हुए हैं, जो कि हम पाते हैं 7 सेवक 7 कलीसियाओं युगों के, प्रत्येक उनमें से सिद्ध रूप से प्रमाणित हुआ जैसा कि परमेश्वर ने अपनी उल्टी गिनती ली। जिस समय से उसने छोड़ा जब तक कि वो वापस नहीं आता, वो लोगों को अपने नाम के निमित्त एकत्र कर रहा है, पेंटिकॉस्ट के दिन से आरंभ करके। पहली इफिसियन कलीसिया, वो सितारा और उस कलीसिया का संदेशवाहक जिसे हम संत पौलुस का होना विश्वास करते हैं, वो आया और एक अंक गिन लिया गया। दूसरा कलीसिया युग जो कि स्मरना है, इरेनियस था, परमेश्वर का महान संत जिसने अंत में कलीसिया युग की अगुवाई की। तीसरा कलीसिया युग जो कि पिर्गमन था, उसका संत कोलंबा था जो कि परमेश्वर का महान संत था। अंधकार के युग चलते यातनाओं के बीच में चौथा युग और चार गिना तौरस का संत मार्टिन, एक महान संत फ्रांस से आया। पांचवी कलीसिया काल और उसका संदेशवाहक उल्टी गिनती में मार्टिन लूथर था। छठवां युग जॉन वेसली उल्टी गिनती में था। अब हम सातवें युग में हैं, लुदिकिया कलीसिया काल, और हम उस महान संदेशवाहक की प्रतीक्षा कर रहे हैं एलिया के दूसरे प्रगटीकरण की उल्टी गिनती पर। और जैसे ही वो प्रकट होता है तब शून्य समय है और कलीसिया घर के लिए अपना मार्ग लेती है, बाहर अंतरिक्ष में जाती है, आकाश में चांद सितारों से आगे हर चीज और यीशु से मिलती है। ये कहां से आया और वे कहां चले गए? इस अंतरिक्ष यान में किस प्रकार से ये लोग पहले स्थान पर अंदर गए, उसी प्रकार से उन्हें हर स्थान में जाना होगा, हर बार। ये ठीक बात है, उसी प्रकार से अंदर आना होगा जिस प्रकार से पहली बार, क्योंकि ये महान गृहपथ लोगों की उस महान देह की, जो नूह के समय में वहाँ केवल एक ही दरवाजा था और द्वार केवल एक ही प्रवेश का द्वार था। हर चीज जो उसके अंदर आती, कोई मतलब नहीं यदि वे न्यायोचित की अधीनता में पहले तल पर गए, दूसरे तल या तीसरे तल, वे सारे एक ही द्वार से अंदर आए, वे सब एक ही प्रकार से भीतर आए। उस अंतरिक्ष यात्रा के दिन में ये वही बात है, हमें उसी प्रकार से भीतर आना है, उसी मार्ग से आना है, उसी संदेश के द्वारा, उसी मसीह के द्वारा, उसी सामर्थ के द्वारा कि उन्होंने उसे पेंतिकुस्त के दिन प्राप्त किया, उसी प्रकार से। ये सारे समय एक सा रहा है क्योंकि ये वही द्वार है। और कैसे हम उस देह में आते हैं? द्वार के द्वारा, और यीशु इस देह का द्वार है। इसलिए हम अंदर आते हैं और परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते हैं यीशु मसीह उस द्वार से होते हुए। और अब द्वार बंद होने के लगभग है, लुदिसियन पर अंतिम उल्टी गिनती और कलीसिया के लिए तय है कि पीड़ाओं से ऊपर उठकर अपने गृह पथ को ले, सब हर चीज और उड़ते हुए स्वर्गों के स्वर्ग का मार्ग ले, कलीसिया को परमेश्वर की गोद में पहुंचाए। आमीन, आमीन। उस समय जब जॉन का वो ग्लेन ने वहाँ से ऊपर चढ़ा, हर कोई अपने मुख के बल पर था, रो और प्रार्थना कर रहा था और आश्चर्य में था कि वो सफलता पाने के योग्य होने जा रहा था। पहली बात, आग उन परमाणुओं से फैलना आरंभ हो गई, जैसे कि वो महान बड़ी मिसाइल ऊपर उठी वहाँ कैंप कैनावाल पर, इस प्रकार से हवा में जा रही थी और लोग चिल्ला और रो रहे थे और आश्चर्यचकित थे कि उनके अंतरिक्ष यात्री का क्या होगा जो ऊपर जा रहा था। ओ, परंतु कलीसिया महिमा, वो भी कुछ आग फैला रही है। आमीन, उल्टी गिनती आ रही है। आमीन, न्यायोचित पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, लुदिसियन कलीसिया युग, हम अंत में हैं। यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। क्या मामला है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0। वे रोएंगे नहीं, परंतु वे गाएंगे और चिल्लाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, जैसे ही कलीसिया अपनी अंतरिक्ष यात्रा आकाश में आरंभ करती है कि यीशु मसीह के साथ हो। आमीन। स्वाभाविक सफलता में वे चांद पर चले गए, आत्मिक सफलता में हम स्वर्ग की ओर उठ रहे हैं। आमीन। स्वाभाविक अंतरिक्ष यात्री चांद पर स्थान ढूंढने का यत्न कर रहे हैं, हम तो पहले से ही स्वर्ग में स्थान पा चुके हैं। मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं। मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूंगा और एक अंतरिक्ष यात्री को वापस भेजकर तुम्हें ले लूंगा। उल्टी गिनती चल रही है, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? आमीन। उल्टी गिनती 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आग बिखरनी आरंभ हो गई। सेवकाई को महिमा में ताज मिला। हालेलुया। ये पुराना रॉकेट ऊपर उठने लगा, चांद की ओर नहीं परंतु महिमा की दिशा में। वहाँ वो है, परमेश्वर की आग फैल रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसे उठा रही है। चांद से सितारों से आगे कोई भी चीज जिस पर कभी कोई मनुष्य के द्वारा उपलब्धि प्राप्त हुई हो, कलीसिया अपनी उड़ान स्वर्ग में परमेश्वर की गोद में लेगी किसी एक सुबह में। मित्रों, मनुष्य सफलता पाने के योग्य हो पाया जो उनके पास प्राकृतिक चीजों के द्वारा था, और परमेश्वर, मैंने इसे सिद्ध किया, आत्मिक के द्वारा ये प्रतीक हुआ। आइए जल्द ही अंतरिक्ष यात्रा में चलें। थोड़ी देर बाद द्वार बंद हो जाएगा। उल्टी गिनती चल रही है। विज्ञान कहता है उनकी उल्टी गिनती 3 मिनट है, हमारी उनसे आगे हो सकती है। ये हो सकता है। 1-0 के लिए तैयार, चलिए अंदर आ जाएं। क्या आप विश्वास करते हैं उल्टी गिनती चल रही है? आइए अपने सिरों को झुकाएं फिर थोड़ी देर के लिए।
फादर, 10, 9,
पिता, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, परमेश्वर, राष्ट्र टूट रहे हैं, इज़राइल जाग रहा है, चिन्ह जो भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से बताए, अन्य जाति के दिन गिने हुए हैं, अटकते हुए हेंगे के साथ, ओ पिछड़े हुए अपने में वापस लौट आओ। क्या ही दिन है, सांझ का उजियाला चमक रहा है। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हर अविश्वासी अपनी शिक्षा के विचारों को एक ओर रख देगा, उसके सारे विचार जो आपके वचन के विरुद्ध हैं, और इस प्रातः उस महिमामय अंतरिक्ष यात्रा में आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें जन्म लिया है, वहाँ इसमें अंतरिक्ष यात्रा के भाग हो गए हैं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ और मसीह की इस महान देह में कि आप विश्वासियों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे, होने पाए आज सुबह तालाब लोगों से भर जाए अपने पापों को मानते हुए, और यीशु मसीह के नाम में गाड़े जा रहे हैं, पुराने अंतरिक्ष यान में बैठ रहे हैं प्रभु, जो कि चांद और सितारों से आगे जा रहा है और मत्सारों से और नामधारियों से आगे जा रहा है। हमने अपनी उल्टी गिनती पूरी कर ली है, आपने हमें बताया कि क्या होगा, 3, ये 3 स्थितियाँ इसकी आपने कलीसियाई काल में बताया कैसे वे जाएंगे, पहला कलीसियाई का युग, दूसरा कलीसिया का युग, तीसरी कलीसिया का युग, चौथी, पांचवी, छठी, ये गिनती 7 तक है, और 7 के बाद ये युग जिसमें अब हम हैं, अंतिम कलीसिया काल, और अब उल्टी गिनती जारी है। इस युग की उल्टी गिनती हो गई है, लूथरन युग, वेस्ली युग, पेंटिकॉस्टल युग, और अब प्रभु अंतरिक्ष यान में महान बड़ा दिखाने वाला कांच जो इसके सामने लगा है इकट्ठा कर रहा है। हम महिमा देख सकते हैं, यीशु को देखते हैं और उसकी सारी सामर्थ्य के साथ देखते हैं, उसके अंदर उसकी सारी प्रतिज्ञाएं हैं, हर चीज जिसकी उसने प्रतिज्ञा दी हम पर परावर्तित हो रही है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, होने पाए कलीसिया जल्द ही सुरक्षित भाग में आ जाए, क्योंकि शून्य घड़ी जल्दी आती है और महान अंतरिक्ष यान का द्वार बंद हो जाएगा, अंतरिक्ष यान, और हम नूह के समान, जैसे वो अपने अंतरिक्ष में चला गया, चले जाएंगे, वो तैरता रहा उस सारे न्याय के जल के ऊपर। और पिता, हम आप में आना चाहते हैं ताकि हम योग्य हो जाएं कि समय की धार से होकर तैर जाएं, मंगल, बृहस्पति, शुक्र के ऊपर से होते हुए आकाश गंगा के आगे और आगे और आगे, जहां के विषय में स्वाभाविक अंतरिक्ष यात्री कुछ नहीं जानता, परंतु हम देखते हैं आप उसे करने देते हैं एक चिन्ह के लिए, ताकि हम भी जाने के लिए तैयार हो सकें। हम पृथ्वी से निकल रहे हैं, प्रभु इसे प्रदान करें, यीशु मसीह के नाम से मैं ये मांगता हूँ। यहाँ रुमाल रखे हुए हैं प्रभु, यहाँ रखे हैं जो बीमार लोगों ने भेजे हैं, वे विश्वास करते हैं प्रभु, और होने पाए वे इस प्रातः अंतरिक्ष के पूरे सदस्य होने पाए। सर्व सामर्थी परमेश्वर की सामर्थ जो अपनी बाइबल को इस पर परावर्तित करता है। उन्होंने संत पौलुस की देह से छुआकर रुमाल और कपड़े लिए और बीमार और पीड़ित चंगे हो गए थे। वे अंतरिक्ष विश्वासी जब वो इसे छूता है चला जाता है। प्रभु बीमारी पीछे होने पाए, हर बीमार व्यक्ति यहाँ पर प्रभु मसीह यीशु में चला जाए, उसके वचन पर, उसकी प्रतिज्ञा और बातों में, पिता से मेरे नाम से कुछ भी मांगो मैं यह करूँगा। वे गिनती गिनना आरम्भ कर दे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0 आगे बढ़ गए। प्रभु ये चारपाइयों स्ट्रेचरों से उठ खड़े हो, चाहे जो हो उन्हें पाए, वे जकड़ी हुई बीमारी से उठ खड़े हो, वहाँ सामने बाहर अंतरिक्ष में चले जाएं, जहाँ डॉक्टर विज्ञान कोई भी उनमें से इस विषय में कुछ नहीं जानता, जहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य ने विज्ञान शोध के द्वारा प्रतिज्ञा दी है जो बाइबल की है, या आत्मिक अनुसंधान बाइबल का, ये दर्शाने के लिए परमेश्वर सदा से परमेश्वर, वो सदा परमेश्वर रहेगा, अब भी परमेश्वर बना रहेगा, वो सदा परमेश्वर रहेगा, और वो अनंत सर्व सामर्थी सर्व शक्तिमान सर्वव्यापी होने से अपने वचन को बनाए रखता है और सब कुछ कर सकता है। प्रतिज्ञा दी है कि सारी चीजें संभव हैं उनके लिए जो विश्वास करेंगे। परमेश्वर इसे प्रदान करें। होने पाए दूर के पुरुष और महिलाएं, लड़का ये लड़की इस प्रातः जो इस उल्टी गिनती को नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन की जानते हुए कि हम ठीक यहाँ पर हैं, अंतिम वस्तु को गिन लिया है, वो शून्य चिल्लाने के लिए किसी भी समय तैयार हैं कि कलीसिया जाए। हम संदेश को समाप्त होते हुए देखते हैं, हम सताव को उठते हुए देख रहे हैं, जैसा कि हमने बीती रात बात की है। हम जानते हैं कि समय निकट है, उल्टी गिनती पूरी हो गई। आपने हमारी सहायता की है कि कलीसिया युगों को आप प्रचार मंच पर लाए और हर चीज को लेकर ये सिद्ध किया कि ठीक इसी समय किसी भी समय ये घटित हो सकता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा, अपने अनुग्रह को लोगों पर भेजा और उन्हें वो दिया जो आपने उनके लिए रखा हुआ था, क्योंकि हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं। और हर पुरुष और स्त्री अपने झुके हुए सिर के साथ, यदि यहाँ कुछ ऐसे हों जो मसीह को इस प्रातः अपना बचाने वाला ना जानते हों और उसे जानना चाहते हैं और परमेश्वर की अंतरिक्ष स्थिति में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उठा लिए जाने में अपने हाथ उठाएंगे और कहें, मैं तैयार हूँ, उठा लिए जाने के लिए तैयार होना चाहता हूँ। भाई वर्णम मेरे लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, और आपको बाहर भीतर आप जहाँ कहीं भी हैं बस अपना हाथ उठाएं, इसके द्वारा आप कहें, परमेश्वर मुझे अंदर ले। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं उल्टी गिनती सुनना चाहता हूँ, मैं ये सुनना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ, कि जब आग बुझ जाए मैं यहाँ घोड़े और बग्गी में बैठना नहीं चाहता, मैं कलीसिया में नहीं होना चाहता हूँ मोटर गाड़ी में सवारी करूँ, मैं उस एक में नहीं होना चाहता जो बस पैरों को भूमि पर से थोड़ा सा उठा दे, पर्याप्त दूरी की कूद और बहुत सा शोर करूं, मैं उसमें होना चाहता हूं जो मुझे चांद सितारों से दूर ले जाए। मैं उल्टी गिनती को सुनना चाहता हूं, ना कि कोई मतसार कोई संगठन, परंतु मैं मसीह में होना चाहता हूं, जहां मैं किसी भी चीज से दूर निकल जाऊं, उस तर्क से जो मनुष्य में है मैं जाना चाहता हूं। क्या कोई और है इसके पहले कि हम प्रार्थना करें? क्या है? परमेश्वर आपको आशीष दे युवा स्त्री, परमेश्वर आपको आशीष दे युवक, आपको आशीष दे। और आप पीछे वहाँ, मैं आपके हाथ देखता हूँ, परमेश्वर निश्चय ही ये देखता है। और आप मेरे भाई, आप भाई, मैं उल्टी गिनती में होना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं हर बोझ को एक और रख देना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई मैं हर पाप को एक और रख देना चाहता हूँ, भाई बहन मुझ में क्रोध है, ओ मैं इसमें नहीं जा सकता इस प्रकार से, परमेश्वर से प्रार्थना करें इसे मुझसे ले लें। मैं भाई बहन मैं थोड़ा पीता हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता, प्रार्थना करें कि मैं इसे एक और रख दूं। मैं धूम्रपान करता हूं, मैं नहीं करना चाहता, परमेश्वर जानता है कि मैं ये नहीं करना चाहता, वे चीजें जिन्होंने मुझे बांध रखा है इस प्रकार, मैं ये करता हूं, मैं इनसे अलग नहीं हो सकता, मैं जानता हूं कि ये गलत है और मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूंगा। दूसरी बात, मैं वचन पर संदेह कर रहा हूं, मैं बस भटक रहा हूं, यदि ये वास्तव में सही था परमेश्वर मेरी सहायता करें, मुझे केवल स्मरण रहे कि ये सारा सही है और मैं इसका विश्वास करता हूँ। मैं उल्टी गिनती को सुनना चाहता हूँ, मैं एक स्थान पर चाहता हूँ जहाँ हर बार मैं परमेश्वर के वचन को देखता हूँ, कुछ भी कहता है मैं उस पर आमीन से विराम लगाना चाहता हूँ और कहता हूँ, प्रभु आप ये हैं, अब सब परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, आप में से प्रत्येक को। क्या यहाँ कोई है अब जो बीमार हो और कहे, भाई ब्रैनम इस प्रातः मैं एक मसीही हूँ, परंतु मैं रहा हूँ, पवित्र आत्मा है, अब मैं हवाई जहाज से उतर गया हूँ, मैं उल्टी गिनती के लिए तैयार हूँ, मैं हर प्रकार के नामधारियों से बाहर आ गया हूँ और हर चीज उल्टी गिनती को सुन रहा हूँ, परंतु अब मैं ये कहना चाहता हूँ एक बात, भाई ब्रैनम इस प्रातः मैं बीमार हूँ, अब भी मुझे प्रभु के लिए कोई कार्य करना है, मैं उल्टी गिनती सुन रहा हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ, मैं चंगा होना चाहता हूँ, इस प्रातः मैं इस पर चढ़ रहा हूँ उल्टी गिनती सुनने के लिए। उल्टी गिनती क्या है? परमेश्वर का वचन ये उल्टा गिना गया, वो कल आज और सर्वदा एक सा है, मैं उसे सुनना चाहता हूँ इस प्रातः अपना चंगा कर्ता के समान। मैं अपना हाथ उठाना चाहता हूँ और कहता हूँ, भाई ब्रैनम मेरे लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब सीधे अंदर आ जाएं, वेदी भरी हुई है, यहाँ चारों ओर फर्श भरे हुए हैं, हम प्रार्थना पंक्ति नहीं चला सकते, वे दीवारों के साथ साथ खड़े हुए हैं और सारी बातें, हमारे पास एक जमघट है, हम ये नहीं करना चाहिए। आप एक अंतरिक्ष यात्री हैं, आप लूथर से आगे जा रहे हैं, लूथर इसमें विश्वास नहीं करता था, वेस्ली ने हाथों को रखा, पेंटिकॉस्टल ने तेल से अभिषेक किया, आप एक अंतरिक्ष यात्री हैं, किसी भी तर्क से आगे चले गए, केवल इसलिए कि वचन ने इस प्रकार कहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। भाई आप कहते हैं क्या लूथर ने विश्वास नहीं किया, क्या वो वचन नहीं था? जी हाँ, परंतु वेस्ली उससे ऊपर गया, भाई वेस्ली ने तेल से अभिषेक किया या कुछ और, क्या आप ये विश्वास करते हैं? जी हाँ, ये ठीक बात है, पेंटिकॉस्टल ने प्रेतों को निकाला, जी हाँ, हाथों को रखा और चंगाई हाथों में थी और सारी बातें, जी हाँ, मैं जानता हूँ कि ये सही है, परंतु आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वेस्ली मुड़कर लूथर को नहीं देखता, पेंटिकॉस्टल मुड़कर वेस्ली को नहीं देखते, न ही हम मुड़कर पेंटिकॉस्टल को देखते हैं, हम अंतरिक्ष यात्री हैं, हम इससे आगे हैं, चलिए आगे बढ़े, मसीह ने ऐसा कहा है। आप ये कैसे करते हैं? आइए मेरी पुत्री पर अपने हाथों को रखें और वो चंगी हो जाएगी। यहूदी ने कहा, यीशु गया और उसके लिए ये किया, ये ठीक बात है, परंतु जब ये रोमी के पास आता है अंतरिक्ष यात्री, उसने कहा, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी छत के नीचे आए, प्रभु बस वचन कह दे, और वो ये पहले ही कह चुका है, यही है। अब चलिए अपने अपने हृदयों को परमेश्वर की ओर उठाएं, आइए अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं, अपने हृदयों को परमेश्वर की ओर, क्योंकि आपकी जो भी आवश्यकता, उद्धार, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, दिव्य चंगाई, ये जो भी है, अपने हाथ ऊपर करें और अपना हृदय परमेश्वर की उपस्थिति में थामें और अनुभव करें कि आप मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं और आप उस विश्वास के अंतरिक्ष यात्री हैं। क्या यहाँ गिनती आती है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ओ यीशु अब आ जाएं। हम उसके नाम की सामर्थ को रख रहे हैं, जैसा कि हमने बीती रात्रि देखा, पौलुस ने एक पुरुष को अंधा कर दिया, दूसरा वाला उस पर दौड़ा, और हम देखते हैं कि यीशु जो चाहे कर सकता है, उसने किया सब प्रकार के आश्चर्य कर्म, और फिर भी अपने समय के अंत में देखते हैं उसे पीटा गया, उस पर थूका गया और सब कुछ। लोग इसे नहीं समझते, वे अनुभव करते हैं कि परमेश्वर ने ये पुष्टि करने के लिए किया कि ये सही है, और फिर लोगों के विश्वास को परखा। प्रभु हम यहाँ पर खड़े हैं और देखा कि बिल्कुल अंधों ने अपनी दृष्टि पाई, बीमारियां, कैंसर जिन पर छाया थी चंगे हो गए, हमने देखा वे जो मरे हुए थे और घंटों से पड़े हुए थे और फिर से जीवन में आ गए। हम जानते हैं ये हमारा महान मसीह जिसकी देह में होकर हम अंतरिक्ष यात्री हैं, और अब उल्टी गिनती आरंभ है, और अपनी चंगाई के लिए इस प्रातः हम विश्वास करने जा रहे हैं, अपने उद्धार के लिए और हर उस चीज के लिए जिसकी हमें आवश्यकता है, क्योंकि हम ये यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, उसने प्रतिज्ञा दी है, मेरे नाम से पिता से कुछ भी मांगो मैं करूंगा, और हमें यही करने की आवश्यकता है कि उसके नाम को पुकारें, और इसे होना ही है। हम उल्टी गिनती को सुन रहे हैं, प्रभु इनमें से कुछ पापी हैं, उन्होंने अपने हाथ उठाए हैं, ये लोग उल्टी गिनती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब इनके हृदय में एक बदलाव आएगा, ये सारे घृणित गंदगी को बाहर कर देगा। बहुत से हैं जो धूम्रपान करते हैं, जो इसे छोड़ने को तैयार हैं, बहुतों ने कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था, और वे इसे छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि हर रुकावट को दूर कर दे जो कलीसिया में इस प्रातः है, बीमारी, पाप, और ये कलीसिया स्वतंत्र हो जाए, यीशु मसीह के नाम में होने पाए सामर्थ और महान सुसमाचार की सामर्थ, पवित्र आत्मा की आग फैलना आरंभ हो गई है, और परमेश्वर के महान अंतरिक्ष यात्री अपने हृदय की इच्छाओं को आज अलग कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसे प्रदान करें, ये लोग आपके हैं और ये अपनी चंगाई पाएं, अपना उद्धार, और इन्हें जिस भी चीज की आवश्यकता हो मैं इन्हें आपको समर्पित करता हूं और आपके हवाले करता हूं। अपनी प्रार्थना के साथ वेदी पर जहां यीशु मसीह का ताजा लहू इस प्रातः है, यीशु मसीह के नाम में ये वो प्राप्त करें जो इन्होंने मांगा है और लोगों ने कहा। ऐसा विश्वास करते हैं, ऐसा हो। मैं विश्वास करता हूँ, आमीन। मैं जानता हूँ कि वो परमेश्वर है। मैं जानता हूँ कि हम परमेश्वर की उस महान सफलता के लिए तैयार हैं। उसकी उपलब्धि क्या है कि पृथ्वी को छोड़ दें। अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाते हैं, दूसरी पृथ्वी, और परमेश्वर की कलीसिया हवाई जहाज से, घोड़े पर से और आदि आदि एक अंतरिक्ष यात्री के समान छोड़ रहे हैं दूसरे संसार में जो कि स्वर्ग है। उल्टी गिनती, ये आरंभ है। आमीन। आप उससे प्रेम करते हैं तो फिर अपने हाथ उठाएं और गाएं। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने पहले, ठीक है भाई नेविल, प्रभु की महिमा हो। और परमेश्वर आपको आज रात्रि तक आशीष दे जब मैं आपसे मिलता हूँ।